بھائی آپ کا شکریہ. آئیں ذرا کھڑے رہیں اور دعا کریں.
Almighty God, author of life and giver of all good spiritual gifts,
قادر مطلق خدا, ہماری زندگی کے مصنف اور تمام اچھی اور روحانی نعمتوں کے دینے والے, ہم در حقیقت اس عظیم موقع کے لیے تیرے شکر گزار ہیں کہ ہمیں تیری حضوری میں اچھی رفاقت کے لیے وقت ملا ہے. یہ ہماری زندگیوں میں سب سے نمایاں واقعہ ہے. خداوند, ہم جتنا طویل عرصہ بھی زندہ رہیں اسے کسی قیمت پر فراموش نہیں کر سکتے. جبکہ اے خدا, ہم دعا کرتے ہیں آج رات ہمارا اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے. ہم کلام کے اس حصے کو دیکھ رہے ہیں جو ضیافت کے آخری دن کے بارے میں ہے. یسوع نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے. اور آسمانی باپ, میری دعا ہے کہ آج وہ الفاظ پھر دہرائے جائیں تاکہ ہم اپنے خداوند کی آواز سن سکیں جو ہمیں پکار رہا ہو, جو ہمیں گہری رفاقت کے ساتھ اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہو. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان موروں کے کھلنے سے ہم پہلے ہی اس کی آواز سن چکے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخری وقت ہے اور وقت نزدیک ہے. باپ, جو کچھ ہم نے مانگا ہے یسوع مسیح کے نام میں اور اس کے جلال کی خاطر یہ تمام برکتیں بخش دے. آمین. تشریف رکھیں. میں یہ اضافہ کرنا پسند کروں گا کہ میری خدمت کی زندگی میں جتنی بھی عبادات ہوئی ہیں, یہ ہفتہ ان سب سے زیادہ میری زندگی میں پر جلال رہا ہے. اس بات میں کوئی حیرت نہیں ہے. بے شک اس سے پہلے بھی میں نے شفا یا عبادات میں بڑے بڑے معجزے وقوع میں آتے دیکھے ہیں, مگر یہ اس سے کہیں بالاتر ہے. یہ عظیم واقعات میں سے ایک ہے. یہ میری زندگی کا نمایاں ترین واقعہ ہے. اور اس مختلف موقع پر اس چھوٹے ٹیبرنیکل کو دیکھا ہے. یہی نہیں بلکہ اندر سے بھی مختلف نظارہ دیکھنے کو ملا ہے. اور اب میں بلی سے پوچھ رہا تھا, اس نے مجھے لے جا کر آنے میں بڑی دیر کر دی تھی. اس نے بتایا کہ اس ہفتے میں ایک اور گروپ نے بپتسمہ لیا ہے. اس ہفتے میں ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی. ان لوگوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا ہے, اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. اور اب اگر آپ کے پاس گرجا گھر نہیں ہے تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ رفاقت رکھیں. یاد رکھیں, یہ گرجا گھر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. ہم کوئی تنظیم نہیں ہے, اور مجھے امید ہے اور میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ کبھی تنظیم نہیں بنے گی. یہ محض ایک رفاقت ہے جہاں مرد اور عورتیں, لڑکے اور لڑکیاں خدا کی میز پر اکٹھے ہوتے ہیں اور کلام کے گرد رفاقت رکھتے ہیں, اور ہماری سب چیزیں مشترک ہیں. اب ہمارے پاسٹر صاحب بھی اچھے آدمی اور حقیقی مرد خدا ہیں, اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور اگر آپ کو ایک سال پہلے کی رویا یاد ہو کہ جس میں خوراک ایک جگہ ذخیرہ کی گئی تھی, اور یہ بالکل سچ ہے, اور ہمارے پاس ہر عمر کے لیے سنڈے اسکول کی کلاسز کی کافی جگہ ہے, اور ہم اس موقع کے لیے نہایت ہی شکر گزار ہیں. ایک بار کسی نے کہا تھا کہ کاش ان کے پاس سنڈے اسکول کی کلاسز ہوتی جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج سکتے. اب آپ کے لیے یہ انتظام موجود ہے. بس اب, اور اگر آپ کے پاس گرجا گھر نہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو سکتے ہیں. لیکن بلا شبہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا گرجا گھر ہو جہاں آپ جا سکیں اور وہاں انجیل کی منادی کی جاتی ہو, تو پھر جیسا کہ کسی اور جگہ پر ہمارا دوسرا گروپ بھی ہو سکتا ہے, آپ سمجھے. لیکن اگر آپ کے پاس گرجا گھر نہ ہو تو آپ آئیں. میں جانتا ہوں ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں نے آ کر اس کو اپنا گرجا گھر بنایا ہے, اور ہم بھی خداوند کے کلام کی طرف یقیناً آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے یاد ہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ جب یہاں سے روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا تھا کہ جن عبادات میں میری ضرورت ہوگی میں اس ٹیبرنیکل میں حاضر ہو جاؤں گا. ابھی تک مجھے علم نہیں کہ مستقبل میں خدا میرے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے, اور مجھے اس کے ہاتھ کا بھروسہ ہے, کسی بدعت یا کسی اور چیز کا نہیں. اور میں روز بروز انتظار کروں گا کہ خدا کسی جگہ کی طرف میری رہنمائی کرے جہاں میں اس کی خدمت بہتر طور پہ کر سکوں, اور جب وہ میرے ساتھ اس کام کو مکمل کر لے تو مجھے بھروسہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں مجھے سلامتی سے قبول کرے گا. اور اب میں تیبرنیکل کے لوگوں کے تعاون کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. जैसा कि बिली ने मुझे बताया था कि मेरा अंदाजा है इस हफ्ते में जितने घर इस टैबरनेकल से मुतलका हैं, उनके साथ एक न एक फर्द मौजूद रहा है। जिन लोगों के पास रहने को जगह ना हो, उनके लिए ये अपने घरों के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। अब ये एक हकीकी मसीही तरीका है, और कुछ घरों ने तो जहाँ तक हो सका है सब लोगों को ही किसी न किसी कोने में ठहरने के लिए जगह देने की कोशिश की है, क्योंकि इस लिहाज से ये बड़ा मुश्किल वक्त साबित हुआ है। ये कुछ इस किस्म का मौका बन गया था जैसे खेलों की दुनिया में बास्केटबॉल या फिर किसी मैच के मौके पर होता है, और बहुत से लोगों ने तो पहले ही जगह महफूज करा ली थी, और एक बड़े ग्रुप के लोग भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इस छोटे से गिरजा में तकरीबन 28 या 30 रियासतों से लोग आए हुए हैं। बस इनके अलावा दो बैरूनी ममालिक से भी आए हैं, इस बेदारी में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए कुछ जगह इनके लिए भी जरूरी थी। बस ये जानते हुए आज मैं कुछ लोगों से कह रहा था, मैंने कहा मैं समझ गया हूँ कि इस इबादत में जेफरसन व्हील के ज्यादा लोग नहीं थे। किसी शख्स ने कहा हम अंदर नहीं आ सकते, इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसकी ये वजह भी हो सकती है। कुछ पुलिस वाले और दूसरे लोग अंदर आना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैंने इनसे बाहर बातें की हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि वो अंदर नहीं आ सके। ये जगह वक्त से पहले ही भर चुकी थी और वो अंदर दाखिल नहीं हो सके, और शायद उन्होंने बाद में वक्त खर्च किया हो लेकिन वो ना आ सके। अब दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं, इसलिए हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं। अब मैं नहीं जानता इसके बाद किसी और पैगाम में अगला मौजू सात नरसिंहों के बारे में हो, लेकिन मोहरों में अमली तौर पर हर चीज मौजूद है। कलीसियाई जमाने आ गए हैं और हमने उन्हें पहले ही जगह दे दी है, जो सबसे अहम काम था, जो कि वक्त की जरूरत थी। लेकिन अब मोहरों के खुलने से नजर आया है कि कलीसिया कहाँ जा रही है और इसका इख्तिताम कैसे होगा, और अब मेरा ख्याल है कि आसमानी बाप हम पर यकीनन मेहरबान रहा है, और हमें उसने दिखाया है कि हमारे पास क्या है। और मैं पुरानी तहरीरों को देख रहा था जिन पर मैंने बहुत साल पहले मुनादी की थी। मैंने कलाम सुनाते हुए वही कुछ बयान किया था जो मैंने उस वक्त दुरुस्त समझा था, ये हकीकत से बहुत दूर थी। और तब मैंने पहली चार मोहरों को 20 मिनट के पैगाम में बयान कर दिया था। मैंने मुकाशवा के चारों घोड़सवारों को इकट्ठे बयान करते हुए कहा था, पहला घोड़ा सफेद बनकर निकला। मैंने कहा गालबन ये इब्तदाई दौर था, अगला घोड़ा काल में चला गया, और बाकी बातें भी मैंने इसी तरह कही थी। लेकिन मेरे अजीजों, जब कलाम हकीकत में जाहिर हुआ तो ये इससे सैकड़ों मील दूर था, इसलिए हमें मुनासिब है कि हम देखें और इंतजार करें, फिर शायद इसका मुनासिब वक्त यही हो। बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि दूसरे लोगों के लिए नाकाबिले कबूल हों, लेकिन मेरा ईमान है जब वो वक्त आएगा और हम अपने खुदावंद से मिलेंगे, फिर आपको मालूम होगा कि ये सब सच था, ये दर हकीकत सच है। अब जो लोग दूसरे शहरों या दूसरी जगहों से या दूसरी रियासतों से या दीगर ममालिक से आए हुए हैं, मैं आपके खलूस की कितनी तारीफ करता हूँ कि आपने अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए इतना सफर किया है, और इनमें से कुछ के पास तो क्याम के लिए जगह भी नहीं थी। मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने क्याम के लिए जगह हासिल करने के लिए कुछ लोगों की मदद की है। कुछ के पास तो खाने के लिए पैसे वगैरह भी नहीं थे, लेकिन वो फिर भी आ गए इस उम्मीद पर कि खुदा उनकी फिक्र करने के लिए है, कोई करिश्मा दिखाएगा। उस पर इतना बड़ा ईमान रखते हुए इन्होंने परवाह नहीं की कि उन्हें खाने को कुछ या क्याम को कुछ जगह मिलेगी या नहीं, तो भी इन्होंने इन बातों को वकूफ में आते देखने की कोशिश की है। आप जानते हैं ये बड़ा जुरत मदाना कदम है, और हर शख्स 100% दुरुस्त है। मैं अपने शरई भाई से मिला जो इस गिरजा की तामीर का काम करता रहा है और वगैरह वगैरह। मैं उसे बता रहा था कि मैं उसके काम को कितना सराहता हूँ। मैं कोई ममार नहीं हूँ, ना ही इस काम के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एक मुरब्बा कोना कैसा होता है और क्या ये दुरुस्त तरीके से बना है या नहीं। और उसने कहा मैं आपको बताऊंगा, उसने कहा आपने शायद इससे पहले ऐसा वक्त कभी नहीं देखा होगा कि आदमी कैसी हम आहंगी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। भाई वुड, भाई रॉबर्टसन और बाकी सब लोग इस तरह अपने फ्राइज और दूसरे काम को अदा करते रहे, और जिस भाई ने समाज के मुतालिक यानी अवाम से खताब के लिए निजाम गिरजाघर में फिट किया था, उन्होंने कहा हर चीज बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है। जिस चीज की जरूरत होती थी उसे करने के लिए आदमी तैयार खड़ा होता था। बस इस सारे प्रोग्राम में खुदा का हाथ मौजूद रहा है, इसके लिए हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं। कलीसिया के बहुत से लोगों, मसलन भाई डच और सिस्टर डच जो यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अतियात दिए हैं। बहुत से दूसरे लोगों ने इस काम में भारी अतियात पेश किए हैं और मैं सोचता हूँ कि उस वक्त किसी चीज की कमी ना रही थी, क्योंकि जो कुछ रह गया था वो भी अदा हो गया था। इसलिए हम इस पर नहायती शुक्रगुजार हैं। याद रखें, ये आपका गिरजाघर है, इसलिए कि आप मसीह के खादम हैं। ये इसी मकसद के लिए बनाया गया है। ये खादम तैयार करने के लिए खुला दरवाजा है, और जो खादम पहले ही मसीह की खिदमत कर रहे हैं, वो आकर यीशु मसीह की रफाकत से खुद को लुत्फंदोज कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप ये जान लें कि यहाँ सबको खुशामदीद कहा जाता है। और जब कभी आप मुझे मस्सा की हालत में तंजीम पर से पर्दा उठाते सुनते हैं, तो उस वक्त भी मैं आपके पासबान या कलीसिया के किसी भाई या बहन के खिलाफ नहीं बोल रहा होता, क्योंकि बहरहाल खुदा के लोग हर तंजीम में मौजूद हैं। लेकिन खुदा तंजीम को कबूल नहीं करता, वो तंजीम में मौजूद लोगों को इंफरादी तौर पर कबूल करता है, लेकिन तो भी वो किसी तंजीम को कबूल नहीं करता, क्योंकि जब लोग खुद को तंजीम के बंदरों में जकड़ लेते हैं, तो फिर उन्हें उस कलीसिया की बातों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। क्या आप समझ गए? इस तरह दूसरों से उनकी रफाकत टूट जाती है, और ये निजाम है जिससे खुदा खुश नहीं है। ये दुनियावी तरीका है और हरगिज खुदा का मुकरर किया हुआ नहीं है। बस अब मैं किसी फर्द के खिलाफ नहीं हूँ, खा को कैथलिक हो या यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, या मेथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, प्रेस्बिटेरियन हो, खा किसी भी तंजीम से हो या किसी भी तंजीम से ना हो, या चाहे गैर तंजीमी शख्स हो, बरहाल खुदा के फर्जंद इन सब में मौजूद है। समझे? कई मर्तबा मैं सोचता हूँ वो वहाँ इस मकसद के लिए है कि रोशनी दिखाएं और हर तरफ से बरगजीदों को खींच लें, और उस अजीम दिन में हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया हवा में मुलाकात के लिए बुलाई जाएगी, और फिर हम सब खुदावंद से मिलने के लिए उठाए जाएंगे, और मैं उसी घड़ी की रात देख रहा हूँ। अब और बहुत कुछ कहा जा सकता है, और आज रात चूंकि इख्तितामी इबादत है, इसलिए जैसा कि आम मामूल है, सब लोग शिफाया इबादत की तवक्को रखते हैं, और मैं इस बात को पाता हूँ कि इस शिफाया इबादत में बड़े बड़े कामों की उम्मीद में बड़े ही अज़्तराब का शिकार है। आज रात भी मैं वैसी ही कैफियत महसूस कर रहा हूँ कि हर शख्स ये उम्मीद लगाए हुए है कि कुछ वकूम में आएगा, और इन मोहरों के खुलने के दौरान हर रात ऐसा ही हुआ है। अब मैं इसे हकीकी मैनों में वाजे करना चाहता हूँ। हर बार इन मोहरों के मुतालिक जो भी बात सामने आई है, इनसे मुतालिक हर बात जिसका मैं यकीन करता था और जो दूसरे लोगों ने सुनी थी, कमरे में जो कुछ जाहिर हुआ उसके बरक्स था। और इस मौके पर मेरा जहन, आज सुबह मैंने शिफाया इबादत इसलिए कराई थी कि मेरा इंसानी जहन मेरी सोच के अंदाजे से बिल्कुल ही दूर हो गया था। मैंने पर्दे खींचकर और रोशनी जलाकर एक ही कमरे में बंद रहने की कोशिश की है, और इसको आज आठवां दिन है। हत्ता के मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में भी नहीं बैठा। मुझे कुछ भाइयों के साथ रुपए पैसे के मामलात के लिए, जो इस गिरजाघर के लिए कर्ज लिए हुए थे, दस्तखत करने बैंक तक जाना पड़ा था, लेकिन मैं सीधा वापस आ गया और मुतालिया करने बैठ गया। और अजीब बात यह है कि किसी एक आदमी ने भी बात नहीं की, जबकि आम तौर पर लोग बार बार दस्तक देते और दरवाजे खोलते और बंद करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ये ऐन खुदा की कुदरत के काम थे। बाई वुड जिनके यहाँ मैं खाना खाया करता हूँ, अमूमन उनका घर कारों से भरा होता है, और इस अरसे के दौरान 8-10 आदमी उनके यहाँ क्याम करने के लिए आने वाले थे, मगर उनमें से एक भी नहीं आया। तो फिर उदावंत के मुझ कमजोर खादम पर जो फजल आज सुबह हुआ, उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जब मैंने अपने जहन के मुताबिक एक आदमी के सवाल का जवाब दिया, और मैं समझ रहा था कि मैंने ठीक किया है, कि अचानक मैंने महसूस किया कि जैसे मैंने किसी बच्चे से कोई चीज छीन ली हो, मैं खुद को मुजरिम महसूस करने लगा, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। मैंने दिल में सोचा शायद यही वजह थी कि मैं इस शिफाया इबादत के लिए इतना इसरार कर रहा था। शायद कोई इतना मायूस और बीमार था जिसके लिए अभी दुआ करने की जरूरत थी, और मैंने सामिन से पूछा। चंद मिनट बाद ये जाहिर हो गया, और किसी ने कहा, क्या आप अपना मतन पढ़ना पसंद करेंगे, या कुछ और कहा। और उस वक्त मैंने कागज का एक टुकड़ा उठाया और उसे दोबारा पढ़कर देखा कि उसमें क्या लिखा था, और फिर किताब की तरफ ध्यान दिया, और वो उस सवाल से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसका जवाब मैंने दिया था। समझे? शायद मैं इसे आपको मुंतकिल कर देता। जब रूह अंदर आ जाता है तो वो ज़ेन मसीह का होता है। आप अपनी सोच से इतने दूर हो जाते हैं, ताकि आपके अपने जहन में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये आपके जहन में है, मैं नहीं जानता, मैं इसकी वजाहत बयान नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, समझे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी शख्स ये नहीं कर सकता। एलिया नामी शख्स किस तरह खुदा की हजूरी के तहत पहाड़ पर खड़ा हुआ और आसमान से आग नाजिल कर दी, फिर आग के बाद बारिश हुई। एक बार उसने आसमानों को बंद कर दिया और 3.5 साल तक बारिश ना हुई, फिर वो वापस गया और उसी दिन बारिश को बुलाया। और उसी मसह के तहत कैसे 400 झूठे नबियों को कत्ल किया और फिर एक औरत से खौफजदा होकर चिल्लाता हुआ बियाबान में भाग गया। देखें, एज़बल जिसने कसम खाई थी कि वो उसकी जान ले लेगी, जबकि अखियब और दूसरे लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने खुदा की हजूरी और अजीम मौजजा देखा था, उसे समझे, उस वक्त रूह उसे छोड़ चुकी थी। अपनी सोच के कुदरती अंदाज से वो नहीं जानता था कि किस तरह सोचे, समझे, वो अपने लिए सोच भी नहीं सकता था। और याद रखें कि फरिश्ते ने उसे सुला दिया और आराम करने दिया, फिर उसको जगाकर रोटी खिलाई, फिर उसे दोबारा सुला दिया और आराम करने दिया और उसे फिर जगाकर रोटी खिलाई। हम नहीं जानते कि 40 दिन तक उस शख्स के साथ क्या हुआ और फिर उसे एक गार में बिठा दिया गया और खुदा ने उसे बुलाया। मफूकुल फितरत की वजाहत करने की कोशिश ना करें, ये आपसे नहीं हो सकता, समझे। आपके करने का सिर्फ एक ही काम है कि आगे बढ़ते जाओ जहाँ तक हो सके, मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँ, लेकिन आज से लेकर मैं, मेरा ख्याल है कि मैं इसे कभी नहीं आजमाऊंगा, समझे। आप मुतलिक तौर पर ईमान रखें या ना रखें, और मैं थोड़ी देर बाद आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है। अब देखें, मैंने दयानतदार रहने की कोशिश की है, खुदा ये जानता है, और आज सुबह उसका सवाल ऐसा ही था जिसका जवाब भी अपनी तरफ से पूरी पूरी दयानतदारी से देने की कोशिश की। मैंने सिर्फ ऐत का पहला हिस्सा पढ़ा था और जैसा कि ये काफी ना था, लेकिन पाक रूह समझ रहा था कि मैं, मेरा जहन तो देखे, जरा गौर करें कि गुज़िश्ता 2-3 दिन तक क्या होता रहा। देखें, मैंने आज सुबह 700 कह दिया जबकि 7000 कहना था और 700 कह दिया था। आज सुबह ऐसा कहने की कोशिश कर रहा था और लोगों ने इस नुक्ते को पकड़ लिया था। देखें, इससे नजर आता है कि आप लोग तवज्जो से सुन रहे थे। अब एक दूसरे मकाम पर मैंने कबूतर कह दिया था जबकि बरा कहना था, लेकिन मैंने इसे दुरुस्त तौर से हासिल कर लिया और इस दूसरे मामले पर मैं तवज्जो ना कर सका, मगर रूह कुदस ने हाजिर होकर मेरा ज़हन उसकी तरफ फेर दिया। ये दोहरी तस्दीक है कि ये बातें सच हैं, ये सच है, खुदा निगरानी कर रहा है कि ये बातें ठीक बयान हो, ये सच है, वो ऐसा ही चाहता है, वो चाहता है कि आप जाने कि ये सच्चाई है, वही इन बातों का भेजने वाला है। क्या यकीनन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको सीखने की जरूरत है, जैसी जरूरत आपको है ऐसे ही मुझे है। इसलिए हम इस इल्म के हासिल हो जाने पर खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि हम किस दौर में रह रहे हैं। देखें, हम कलीसिया के उठाए जाने से पहले इंतहाई आखिरी जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें, अभी तक हम बातें ही करते रहे हैं, इसलिए आए खुदावंद से उसके कलाम पर फिर बरकत मांगते हैं। हमारे आसमानी बाप, अब वो अजीम रात और वो अजीम घड़ी आ गई है जब एक अजीम काम जहूर में आए, ये सब लोगों पर छाया हुआ है। और है बाप, मेरी दुआ है कि आज तू ऐसा कर कि लोग बगैर किसी शक के साए के अपने दिलों और जहनों में समझ लें कि खुदा अभी तक तख्त पर है और वो अपने लोगों पर मेहरबान है, और जिस घड़ी का इंतजार दुनिया मुद्दत से कर रही है अब करीब आ रही है, इसलिए कि दुनिया निजात के लिए पुकार रही है। हम देख सकते हैं कि अजरामे फल्क इसे वापस लाने के लिए तैयार हैं। हम देख सकते हैं कि अजरामे फल्क कलीसिया को मसीह की हजूरी में वापस लाने के लिए तैयार हैं। हम देख सकते हैं कि दुल्हन सूरत पकड़ रही है, वो शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही है। हम रोशनियों को टिमटिमाते देख रहे हैं। हम जानते हैं कि हम इख्तिताम के करीब हैं। आसमानी बाप, अब जबकि हम नहायत ही अजीम वाक्य पर मुनादी करने और सीखने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, जो 2000 साल पहले जलाल में वाक्य हुआ और अजीम और प्यारे रसूल यूहन्ना को दिया गया था, और आज रात हम इस पर बोलेंगे। तू रूह कुदस को भेज कि वो अपनी मुकाशवा की कुदरत के साथ आए, ताकि इस बात को हम पर जाहिर करे जो वो हमारे इल्म में लाना चाहता है, जैसे गुज़िश्ता रातों के दौरान उसने किया है। हम अपने आप को कलाम के साथ तेरे सुपुर्द करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। अब हो सकता है कि आप अपनी बाइबल खोलने के ख्वाहिशमंद हो। ये एक छोटी सी आयत है, बल्कि ये किताबे मुकद्दस की छोटी सी आयत है, लेकिन ये सातवीं आयत, बल्कि ये तो आखिरी मोहर साबित हो गई है। अब देखें कि गुज़िश्ता रात हम छठी मोहर पर बोल रहे थे। पहली मोहर में मुखालिफ मसीह मुतारिफ हुआ, उसका जमाना शुरू हुआ और हमने देखा कि वो किस तरह निकला और जो जानदार खुदा की कुदरत के साथ मुतारिफ हुआ वो किस तरह मुखालफ मसीह का मुकाबला करने के लिए उसके साथ चला। मैं नहीं समझता इसके मुतालिक किसी के जहन में कोई सवाल होगा। फिर हमने देखा कि उस कलीसियाई जमाने के फौरन बाद वो हैवान निकल गए। फिर जब इसमें से गुजरते गए तो हमने देखा सारी तस्वीर ही बदल गई, अब कोई हैवान नहीं है, समझे। लेकिन ये मुतारिफ होता रहा और कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी चलता रहा और ये आगे बढ़ते हुए मसाइब के दौर तक पहुंचा। ये किस तरह कलीसिया जमानों के ऐन मुताबिक साबित हुई। मुझे एक नुक्ता या शोशा भी ऐसा नजर नहीं आया जो पूरी तरह जमानों और वक्तों के मुताबिक ना निकला हो। जरा सोचे, इससे पता चलता है कि इसका करने वाला खुदा ही था। इंसानी जहन इसकी पैमाइश नहीं कर सकता। अब हम ये भी जानते हैं कि हमें खुदावन ने हमें कलाम मुकद्दस का नविश्ता दिया है, जो यीशु ने कहा था कि वो कूमे आएगा। हमने इसे किस तरह मालूम किया है और यहाँ वो आया और जाहिर किया और इन्हें बिल्कुल ठीक तौर पर साबित किया। फिर उसने मुखातिब होकर इन बातों को जाहिर किया और छह की छह मोहरों को हदफ तक लेकर गया, लेकिन उसने सातवीं को नजरअंदाज कर दिया, समझे। और फिर जब मोहरें खोली गई तो गौर करें कि खुदा ने सातवीं मोहर की इस अलामत को भी जाहिर करने से इतराज किया, समझे। ये एक कामिल बेद है जो खुदा के पास है। तवज्जो करें, अब हम बाइबल में से सातवीं मोहर को पढ़ने जा रहे हैं। ये मुकाशवा आठवें बाब में है। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो आसमान पर आधे घंटे तक खामोशी छाई रही। इसके बारे में बस इतना ही लिखा है। अब हम इस पर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा देर ना लगे, क्योंकि आज रात आप में से अक्सर लोगों ने घरों को जाने के लिए सफर करना है। मैंने आज सुबह दोबारा एक शिफाया इबादत कराने का सोच लिया था, जिससे आप सुबह जा सकेंगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखें, खुद मुझे भी अपने घर ट्यूसान एरिजोना जाना है, जहां मैं रहता हूं और वहां पर मेरा घर है। अगर खुदावंत की मर्जी हुई तो मैं वापिस आऊंगा और मेरे घराने का भी यही ख्याल है कि जून के महीने में चंद दिनों के लिए हम फिर यहाँ आए। और अब शायद मैं भी उसी वक्त आप सब लोगों से यहाँ एक इबादत में मिलूं। मेरी आइंदा तयशुदा इबादत एल्बोकर्की न्यू मैक्सिको में है। मेरा ख्याल है ये 9, 10 और 11 तारीख है और मैं जुमेरात और मुबारक जुमे को वहाँ होऊंगा। इसलिए मेरे पास सारी चीज का होना जरूरी था। मेरे और भी कई प्रोग्राम थे जहाँ मैं उस वक्त तक उसे पूरा ना कर सका। बस जुमेरात की रात और जुमे की रात मैं एल्बोकर्की न्यू मैक्सिको में होऊंगा। इसके के बाद नजदीक तरीन प्रोग्राम अमकान है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो यकीनन होना है, जो शमाली कैरोलिना के साथ साउदर्न पाइंस में आधी रात की धूम पर होगा, जो मेरे अच्छे दोस्तों के साथ होगा। इस वक्त वो फोन पर सुन रहे हैं, जिसकी अतला उन्होंने तार भेज कर दी है। और फिर लिटिल रॉक में भी एक और ग्रुप मौजूद है, जो यीशु नाम के लोगों का एक ग्रुप है और उनके पास जाने का वक्त भी करीब आ रहा है। उनके साथ पिछले मौसम में काउ पैलेस में इबादत हुई थी और अरकनसा के लिटिल रॉक में कन्वेंशन करने वाले हैं। वो पिछले साल से इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं कि एक रात का वक्त जरूर दिया जाए, या मुमकिन हो तो तमाम इबादत या कम अज कम एक रात का वक्त दिया जाए। इसलिए वो एक रात के लिए तो लाजमी तैयारी करेंगे। मैंने कुछ ना जानते हुए उन्हें कह दिया वो इमकान के तौर पर तशहीर करें, फिर उन्हें कुछ देर के बाद मालूम हो जाएगा। क्या उसने अभी फोन पर बात की थी? हाँ, ठीक है। क्या कह रहा था? मौसम बहार में मैं भूल गया था, 24 को, क्या मई 24 से 28 जून। अब ये अमकानी ऐलान है, यानी कि अगर खुदावन की मर्जी हुई तो। देखे, मैं वहाँ जाऊँगा। देखे, यही सबब है मैं इन कामों को करना पसंद करता हूँ। आप कुछ देर बाद सीखेंगे, अब समझे। जब मैं ये जान जाता हूँ कि खुदावन ने मुझे किसी जगह जाने के लिए कहा है कि वहाँ जा, तो मैं वहाँ खुशी से कदम रखना पसंद करता हूँ। फिर अगर किसी जगह दुश्मन सर उठाए तो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ खुदावन यीशु के नाम से आया हूँ, फौरन पीछे हट जा, समझे समझे समझे। यूँ हमें अपने मैदान का इल्म होता है, समझे। जब खुदा आपको किसी जगह भेजता है तो आपकी हिफाजत करता है, समझे। लेकिन अगर आप अपने ही ख्याल के साथ जाएं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद खुदा वहाँ ना हो। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो, मैं पूर्ण यकीन होना पसंद करता हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ। मैंने बहुत मर्तबा देखा है कि खुदा ने मुझे नहीं कहा कि मैं ये करूँ, लेकिन मैं हर मुमकिन हर हद तक पूर्ण यकीन होना पसंद करता हूँ। अब खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब हम गौर करें कि ये सिर्फ एक ही आयत है। इससे पहले जरा हम एक छोटी सी और बात करना पसंद करेंगे। अगर आप गौर करें तो हम सातवें बाब को नजरअंदाज कर गए हैं। छठा बाब छठी मोहर पर खत्म होता है, लेकिन छठी और सातवीं मोहर के दरमियान कुछ और भी वाकया हुआ है, समझे। ये कितने प्यारे अंदाज में अपनी दुरुस्त जगह पर है, यानी छठी और सातवीं मोहर के दरमियान रखा गया है। अगर आप सातवें बाब पर गौर करें, हम देखते हैं कि छठे और सातवें के दरमियान वक्फा है। मुकाशवा की किताब के छठे और सातवें बाब के दरमियान एक वक्फा है, और ये वक्फा छठी और सातवीं मोहर के दरमियान दिया गया है। अब हम इस पर गौर करना चाहते हैं, इस मुख्तसर अरसे पर गौर करना चाहते हैं। ये बड़ा अहम है। अब याद रखें कि मुकाशवा के चौथे बाब के बाद कलीसिया उठा ली जाती है। जब चारों घोड़सवार निकल जाते हैं, तब कलीसिया उठा ली जाती है, समझे। कलीसिया के साथ जो कुछ भी हुआ मुकाशवा की किताब के चौथे बाब तक हुआ, जो कुछ मुखालफ मसीह की तहरीक के दौरान हुआ वो चौथे बाब तक हुआ। जो ही मुकाशवा की चौथी मोहर जो मसीह और मुखालफ मसीह दोनों के लिए है खत्म हुई, तो मुखालफ मसीह को और साथ ही उसकी फौज को भी फैसला सुनाने के लिए मसीह भी अपनी फौज के साथ आ गया। ये पुरानी जंग है जो वक्त के आगाज से पहले शुरू हुई थी, और फिर उन्हें यानी उस वक्त शैतान और उसके फरिश्तों को निकाल दिया गया था। फिर वो जमीन पर आ गए और जंग दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि हवा ने उस हद को तोड़ दिया था जहां वो खुदा के कलाम के पीछे महफूज थी। और उसी वक्त से शैतान ने खुदा के कलाम पर जंग जीत ली, इसलिए कि खुदा की आवाम के एक कमजोर फर्द ने रुकावट तोड़ दी। बिल्कुल यही तरीका है जिससे शैतान ने हर बार ये जंग जीती है, क्योंकि खुदा की आवाम के एक फर्द ने कलाम के रास्ते से रुकावट को हटा दिया। और यही इस आखिरी कलीसिया जमाने में एक तंजीमी निजाम के जरिए हुआ, झूठा घोड़सवार जिसने कलाम को कबूल ना किया। इस निजाम के जरिए जिंदा खुदा की हकीकी असली पाक कलीसिया को कलाम से हटाकर फिर अकायद की तरफ माइल कर दिया। अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया अकायद पर तामीर की गई? क्या वो इसे तस्लीम करते हैं? यकीनन वो यकीनन इसे तस्लीम करते हैं। क्या यही बात नहीं है? इससे कैथोलिक कलीसिया के एहसास को यकीनन जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी ये मानते हैं। थोड़ा अरसा पहले उन्होंने एक नई बात का इजाफा किया कि मुकद्दसा मरियम जिंदा उठा ली गई थी। आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने ये कहा। कितनों को ये बात याद है? यहाँ अखबारात में भी मौजूद है, यकीनन, समझे। ये एक नया अकीदा है। देखें, ये सब अकायद हैं, कलाम नहीं, समझे। हाल ही में एक शख्सी गुफ्तगू के दौरान एक प्रिस्ट ने कहा, मिस्टर ब्रैनम, उसने कहा, खुदा अपनी कलीसिया के अंदर है। मैंने कहा, खुदा अपने कलाम के अंदर है। उसने कहा, हमें बहस नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं अर्ज कर रहा हूँ, खुदा अपने कलाम के अंदर है। ये सच है, क्योंकि लिखा है, ना कोई इसमें से किसी चीज का इजाफा करे और ना ही इसमें से कुछ निकाले, क्योंकि ये कलाम का फरमान है। उसने जवाब दिया, ठीक है, खुदा ने मसीह ने अपनी कलीसिया को इख्तियार दिया था और कहा था, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा, और जो कुछ, मैंने कहा, ये एन सच है। उसने कहा, हमारे पास तो ये है, इसी असूल पर हम ये कहते हैं कि हमें गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मैंने कहा, अगर आप इसे उस तरह करें जैसे ये कलीसिया को दिया गया था और जैसे उन्होंने किया, तो मैं इसे कबूल करूंगा। अगर आप इस तरह करें, देखें यहाँ पानी है और आप अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, देखें ना कि कोई और आदमी आपसे कहे कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं, समझे समझे। ये एन इसी तरह है। पेंतेकोस्त के रोज पत्रस को उन कुंजियों के साथ देखें, याद रखें जिन कुंजियों की वो बात करते हैं वो पत्रस के पास थी और उन्होंने कहा ए भाइयों हम क्या करें कि निजात पाएं। पत्रस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, किस लिए? गुनाहों की माफी के लिए, और फिर तुम रोल कदुस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये सच है, बस ये हमेशा के लिए तय है, ये मुकम्मल है। उस वक्त ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब आप देखते हैं कि मुखालफ मसीह अंदर आ गया, जैसे कि हमने तस्वीर कशी करके उसे देखा था। ये कैसा मुकाशवा है, मेरे खुदा, जरा सोचे किन तमाम बरसों में हम उसे जुम्बश करता देखते रहे हैं, और अब ये मुतलिक तौर पर ब्राय रास्त खुदावंद यूं फरमाता है। अब हम गौर करें तो ये वक्फा हमें छठे और सातवें बाब के दरमियान दिखाई देता है। अब मुकाशवा का सातवां बाब यहाँ एक वक्फा जाहिर करता है। ये यहाँ फजूल मकसद के लिए नहीं है, इसे इनके दरमियान बगैर मकसद के लिए नहीं रखा गया। देखें ये यहाँ एक मकसद के तहत है, ये एक मुकाशवा है जो किसी चीज को जाहिर करता है। गौर करें ये कैसी पुरअसरार चीज है और अदाद शुमार के लिहाज से कलाम के मुताबिक है, समझे। यकीनन क्या आप खुदा के इल्म अदाद पर यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो फिर आप यकीनन खोए हुए हैं, आप यकीनन कलाम में गुम हो जाएंगे। अगर आप चार या छह या किसी भी अदद अल्फाज की तरतीब से एक तरफ रख दें, तो आपको ऐसा मंजर नजर आएगा जिसमें किसी दरख्त की चोटी पर गाय घास खा रही हो। आप यकीनन बाहर निकल जाएंगे, यकीनन खुदा का बल्कि उसका पूरा कलाम मुकम्मल तौर पर रियाजी के साथ चलता है। जी हाँ जनाब, ये कामिल है, सबसे ज्यादा कामिल, और कोई अदबी इल्म इसकी तरह लिखा नहीं जाता, इसलिए ये हिसाबी लिहाज से बिल्कुल कामिल है। अब आठवें बाब में सातवीं मोहर का सिर्फ मंजर पेश किया गया है, मंजर, लेकिन वहाँ और कुछ जाहिर नहीं किया गया। सातवीं मोहर में कोई चीज जाहिर नहीं की गई। अब मुकाशवा सातवें बाब के साथ कोई काम नहीं है, सातवीं मोहर के खुलने में मुकम्मल खामोशी है। लेकिन अगर मेरे पास वक्त होता, लेकिन तो भी मैं कुछ जगहों से बयान करने की कोशिश करूंगा, पदेश की किताब से लेकर इस सातवें बाब, बल्कि इस सातवीं मोहर को बयान करता। पदेश की किताब में इब्तिदा के वक्त से ये मौजूद है, ये मोहरें ठीक मंजर पर आती हैं। क्या आपको याद नहीं कि आज सुबह ये बातें किस तरह मंजर पर आईं? आज रात इन्हें सामने आते देखें और आप मालूम करें कि जो ही सातवीं मोहर आती है तो सिलसिला कट जाता है। जी हाँ, आखिरी वक्त के मुतालिक खुदावंद यीशु ने खुद बताया है, और उसने छह की छह मोहरें बयान की, लेकिन जो ही वो सातवीं पर पहुँचा तो रुक गया। ये बात है, समझे, ये एक अजीम चीज है। अब हम थोड़ी देर सातवें बाब पर गुफ्तगू करेंगे ताकि इसे छठी और सातवीं मोहर के दरमियान पुल बना सके, क्योंकि यही वाद मुवाद है जिसे लेकर हम ठीक तौर से आगे बढ़ सकते हैं। और फिर ये कि छठी और सातवीं मोहर के दरमियान इसराइल को बुलाया जाता है। अब यहाँ मेरे यहोवा विटनेस के कुछ प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये सब या वो कभी यहोवा विटनेस थे, शायद उनमें से कुछ अब भी यहोवा विटनेस हैं, वो हमेशा ऐसा करते रहे हैं। मिस्टर रसल ने भी इन 144,000 को मसीह की आसमानी दुल्हन बयान किया था, समझे वो, बल्कि ये ऐसा नहीं है, इसका कलीसिया जमाने के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर इसराइल है। अब हम चंद मिनट तक इसे पढ़ेंगे। अब इस वक्फे के दरमियान छठी ये मोहरों के दरमियान का वक्फा एक बुलाहट है, और कलीसिया के उठाए जाने के बाद मसाइब के दौर के दौरान 144,000 यहूदियों पर मोहर की गई, समझे, इसका कलीसिया जमाने के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। ओ, ये बुलाया जाना है, ये किस तरह कामलियत के साथ कलाम के साथ हम हांग है। दानियल के 70 हफ्तों में से आखिरी 3.5 साल दानियल के लोगों को दिए गए, गौर करें, गैर कौमों को नहीं बल्कि दानियल के लोगों को, और दानियल एक यहूदी था।
Israel believes only her prophets. And
अब इसराइल को याद रखें कि इसराइल सिर्फ अपने साबित शुदा नबियों का यकीन करता है, और इब्तदाई रसूली कलीसिया के जमाने के बाद तमाम कलीसिया जमानों में यानी प्रोटेस्टेंट कलीसिया में कोई नबी बरपा नहीं हुआ। मुझे बताएं कि वो कौन था और मुझे दिखाएं, कभी नहीं। इब्तदाई रसूली जमाने में उगबस नाम साबित शुदा नबी उनके दरमियान मौजूद था, लेकिन तब जब गैर कौमें खुदा की मीरास में शामिल हुई और पालूस ने गैर कौमों की तरफ रुख किया और बाद में पतरस ने भी, जैसा कि हम गुज़िश्ता रात पढ़ रहे थे, खुदावंद से इस बात को हासिल किया, खुदावंद अपने नाम की खातिर गैर कौमों के लोगों में से अपनी दुल्हन ले रहा है। इसके बाद तारीख के सफात पर कभी नजर नहीं आया कि गैर कौमों में कोई नबी आया है। अब आप तारीख का मुतालिया करके तलाश कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल इसलिए कि वो नबी एन कलाम के बरक्स होता, ठीक है। जब पहला जानदार निकला तो ये एक बब्बर शेर था, ये नबी का कलाम था। इसके बाद दूसरा जानदार निकला जो कि मुशक्कत और कुर्बानी था। इसके बाद तीसरा जानदार निकला जो कि इंसानी जहानत थी। लेकिन आखिरी जमाने के लिए हमारे साथ वादा किया गया कि सब गलत रहनुमाई और नामुकम्मल कामों को पूरा करके इब्तदाई कलीसिया की तरफ वापस लाया जाएगा, क्योंकि इसकी पेशनगोई की गई थी कि सातवें फरिश्ते का पैगाम खुदा के तमाम वेदों को मुकम्मल तौर पर जाहिर कर देगा। और फिर हमने इन सब को समझ लिया है, हम देखते हैं कि ये पूरी तरह कलाम के साथ जुड़े हुए हैं। अब क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि ऐसा शख्स जब मंजर पर आएगा तो क्या होगा? याद रखें, जब वो आएगा तो इतनी हलीमी से कलाम करेगा कि कलीसियाएं एक तवील अरसे तक उसे समझ ना सकेंगी। क्या आप कलीसियाओं का तसव्वुर कर सकते हैं जो अभी तक सलाहकारों की रवायात के मुताबिक है? क्या वो कभी ऐसा नबी खुदा से हासिल कर पाएंगी जो मजबूती के साथ उनकी तालीमात और तंजीमों के खिलाफ मुनादी करता हो? अब इसे सिर्फ एक ही शख्स पूरा कर सकता है। रूह जमीन पर सिर्फ एक ही रूह है जिसे मैं जानता हूँ और जो हो सकता है, और वो इस जमाने का एलिया ही हो सकता है। और कलाम में बताया गया है कि ऐसा होगा जो कि और कुछ नहीं बल्कि मसीह का रूह होगा। जब मसीह आया तो मुकम्मल मामूरी था, वो एक नबी था, वो नबियों का खुदा था। समझे? गौर करें, उन्होंने मसीह के साथ किस तरह नफरत की, लेकिन वो उसी तरह आया जैसे कलाम ने उसके आने के बारे में कहा था। और जैसा कि वो नबी था, उन्होंने दिलों के ख्यालात बताने वाली रूह को नफाक रूह कहकर कुफर बका और खुदा की बादशाही से दूर हो गए, और उसे किस्मत का हाल बताने वाला या शैतान कहा, ऐसा ही कहा। देखें, किस्मत का हाल बताने वाली रूह शैतानी रूह होती है, यकीनन। क्या आप ये जानते हैं? बिल्कुल इसी तरह है, किस्मत का हाल बताना नबी की नकल है जो कि खुदा के नजदीक मुतलिक कुफर है। अब गौर करें कि ये कैसी कामिल सूरत में दानियल के आखिरी 3.5 साल के कलाम के साथ मुआफकत रखता है। गौर करें कि इसराइली ईमानदारों को पुराने ऐद में बताया गया है कि वो किस कदर अपने नबियों पर ईमान लाएं, और ये उसी सूरत मुमकिन है जब वो नबी साबित हो जाएं। अगर तुम्हारे दरमियान कोई रूहानी या नबी हो तो मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा खुद को उस पर जाहिर करूंगा और ख्वाबों और रोयाओं में उसके साथ कलाम करूंगा, यानी वो ख्वाबों की ताबीर बयान करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब देखे तो नबी इस काबिल होगा कि उसकी ताबीर बयान कर सके, और अगर वो रोया देखेगा तो उसे बयान कर देगा। मैं ख्वाबों और रोयाओं के जरिए खुद को उस पर जाहिर करूंगा और जो कुछ वो उसे बयान करे, मैं ख्वाबों और रोयाओं के जरिए खुद को उस पर जाहिर करूंगा और जो कुछ वो कहे वो पूरा हो, तो तुम उस नबी की सुनना क्योंकि मैं उसके साथ हूँगा। लेकिन अगर उसकी बात पूरी ना हो तो तुम उसकी ना सुनो। जी हाँ, ये सच है, उससे दूर हो जाओ और उसे छोड़ दो, समझे? अब ऐसा ही है, अब इसराइली उसी का हमेशा यकीन करेंगे। क्या आप समझ नहीं रहे कि ऐसा क्यों है? अब मैं चाहता हूँ कि आज रात आप ये सबक अच्छी तरह से हासिल कर लें। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल को खुदा से ये हुक्म मिल चुका है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि गैर कौमें उनके दरमियान कितने रसायल फैलाती हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आप उन्हें कितना कलाम पेश करते हैं और सबूत के तौर पर अपनी बगल में बाइबल रखते हैं। या ये या कोई दूसरी चीज करते हैं, मगर वो नबी के अलावा कभी किसी दूसरी चीज को कबूल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सिर्फ नबी ही वो शख्स होता है जो इलाही कलाम को लेकर उसके मकाम पर रख सकता है और एक साबितशुदा नबी बन सकता है, वो उसका यकीन करेंगे। ये सच है। जैसा कि मैं बेंटन की बंदरगाह पर एक यहूदी से गुफ्तगू कर रहा था, जब जॉन रायन को पिनाई हासिल हुई थी, जो कि तमाम उम्र नबीना रहा था, वो मुझे दाऊद के शहर में ले गए और एक रबी जिसकी लंबी दाढ़ी थी मेरे पास आकर कहने लगा, आपने किस इख्तियार के साथ जॉन रायन को बिनाई अता की है? मैंने कहा, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा, खुदा ना करे उसका कोई बेटा हो, समझे? फिर उसने कहा, आप लोग खुदा के तीन टुकड़े करके किसी यहूदी को नहीं दे सकते, क्योंकि तुम उसको तीन खुदा बनाते हो, इसलिए आप लोग बुत प्रस्तों का टोला हो। मैंने कहा, मैं उसे तीन हिस्सों में तकसीम नहीं करता। मैंने कहा, रबी, क्या आपके लिए ये अजीब ना होगा कि आप अपने नबियों में से एक ऐसे नबी पर ईमान रखें जिसने कोई गलत बात कही हो? उसने कहा, हमारे नबी कोई गलत बात नहीं कहते। मैंने कहा, यशाया 9:6 किसकी बात कर रहा है? उसने कहा, मसीहा की। मैंने कहा, तो फिर मसीहा भी एक इंसान नबी होगा, क्या ये दुरुस्त है? उसने कहा, जी हाँ जनाब, ये दुरुस्त है। मैंने कहा, मुझे दिखाएं यीशु ने इस बात में कहाँ कमी छोड़ी है। उसने कहा, मैंने कहा, मसीह यानी नबी का खुदा से क्या रिश्ता होगा? उसने कहा, वो खुदा होगा। मैंने कहा, ये दुरुस्त है, अब आप कलाम के सिरे पर पहुँच गए हैं। मेरी ऐसी मदद हुई कि मेरे सामने उस यहूदी की आंखों से आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने कहा, मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा। मैंने कहा, रबी, क्या आप इस पर ईमान लाते हैं? तो उसने कहा, देखें, उसने कहा, खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। मैं समझ गया, वो नए ऐदनामे में से बोल रहा था। मैंने कहा, ठीक है रबी, अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा, अगर मैं इसकी मुनादी करूंगा, तो मैं वहाँ नीचे होऊंगा। आप जानते हैं कि उनका मकाम वहाँ पहाड़ी के ऊपर है, मैं नीचे गली में रोटी के लिए भीख मांग रहा हूँगा। मैंने कहा, मैं वहाँ नीचे अपनी रोटी के लिए भीख मांगना ज्यादा पसंद करूँगा। आप यहूदियों को देखें, जिन्होंने अभी तक अपने हाथ दौलत पर रखे हुए हैं, समझे? मैं ज्यादा खुशी से मांगता और उसका नाम सुनहरी हरूफ में ऊपर था। मैंने कहा, मैं वहाँ नीचे टुकड़े खाकर और नाले का पानी पीकर ज्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि मैं खुदा के बारे में पुरयकीन हूँ। मैं खुदा के साथ अमहांग और सच्चा हूँ। इसके बरक्स, अगर मुझे इस बात का भी इल्म हो कि मैं खुदा से दूर हूँ और वहाँ ऊपर इमारत में रहूं, जिस पर मेरा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा हो, उसने मजीद मेरी कोई बात ना सुनी और अंदर चला गया। लेकिन हकीकत यही है, आप खुदा को दो या तीन टुकड़ों में काटकर, उसे बाप बेटा और रूल कहकर, उसे तीन खुदा बनाकर किसी यहूदी के हाथ में नहीं दे सकते। उसका पहला हुक्म है कि मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना। मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ। यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था, सुन ए इसराइल, मैं खुदावन तेरा खुदा वाहिद खुदा हूँ, तीन नहीं। आप यहूदियों को ये कभी भी नहीं दे सकते, हरगिज नहीं। कोई नबी कभी तीन खुदाओं की बात नहीं करेगा, नहीं, कभी नहीं। आप ऐसा कभी नहीं सुनेंगे, नहीं जनाब, क्योंकि ये बात बुत प्रस्त गैर कौम से आई है। जी हाँ जनाब, गौर करें, मगर ये नबी आएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अब मुकाशवा 11 बाब वाले नबी आएंगे। हमने इसमें से कुछ पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि जब आप टेप वगैरह सुने तो उसको पढ़ें भी। वो नबियों के निशान के साथ पूरी तरह साबित शुदा नबी होंगे, तब बनी इसराइल उनकी सुनेंगे। अब ऐ मेरे यहोवा विटनेस वाले दोस्तों, अब ये जान लो कि इन 144,000 का दुल्हन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी हमायत में कलाम का एक नुक्ता भी नहीं है। नहीं जनाब, ये दुल्हन नहीं है, ये यहूदी है, यानी वो बरगजीदा जो दानियल के 70 हफ्तों के आखिरी 3.5 सालों में बुलाए जाएंगे। अब जैसा कि मैं इन बातों के हवाला जात बयान कर रहा हूँ, तो सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों के लिए नहीं, बल्कि देखें, इसलिए कि ये टेप पूरी दुनिया में जाएगी। आप समझे? आप इसे समझें। इसी सबब से मैंने इसे दोहराया है, क्योंकि ये किसी मकसद के तहत है। गौर करें, अब देखें कि उन्हें किस लिए अंधा रहने दिया। क्या आप जानते हैं कि उनको क्यों ऐसा रहने दिया? ताकि यीशु को खुदा ने यहूदियों की आंखें बंद रहने दी, ताकि वो यीशु को पहचान ना सकें। अगर उन्हें इल्म हो जाता, अगर वो जान जाते कि उस निशान को जो उसने दिखाया था, अगर वो अपने दुरुस्त मकाम पर होते, जैसे वो शरीयत के तहत उस वक्त थे जब खुदा ने उन्हें एक नबी के बारे में बताया था, तो वो यीशु को देख लेते और पुकार उठते कि ये मसीहा है। ऐसा क्यों हुआ? उस दौर के लोगों में से जिनके नाम बर्रा की किताबें हयात में लिखे हुए थे, जैसे उसके रसूल और कुछ और लोग थे, उन्होंने उसे देखा और पहचान लिया। बाकियों ने क्यों नहीं पहचाना? गौर करें, इसलिए कि वो अंधे किए गए थे। वो उसे नहीं समझ सके थे, वो उसे अभी तक नहीं समझते और वो उस वक्त तक भी नहीं समझेंगे जब तक वो एक कौम की हैसियत से पैदा ना हो। और कलाम नकाम नहीं हो सकता, याद रखें, कलाम नकाम नहीं हो सकता। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप कितने बेकरार हैं और क्या कुछ वाकई हुआ है, लेकिन कलाम फिर भी नकाम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे खुदा ने कहा था, समझे। अब हम महसूस करते हैं कि इन्हीं चीजों को वकूं में आना चाहिए। यही सबब है कि वो उस वक्त यीशु को पहचान ना सके, हालांकि उसने खुद अपनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर कराई कि वो नबी है। हत्ता कि वो बेचारी बूढ़ी सामरी औरत उसे कुएं पर नजर आई। वो पहले कभी सामरिया नहीं गया था। अचानक उसने उसकी तरफ रुक किया और कहा, मुझे इस रास्ते से होकर जाना जरूर है। और वो उस जगह पहुंचा जहां वो औरत मौजूद थी, और वो औरत अपनी उस हालत में भी उस जमाने के काहिनों और मजहबी लोगों की निस्बत उस खुशखबरी को कबूल करने के लिए बेहतर थी, और उसने उसे कबूल कर लिया यकीनन। अब समझे, लेकिन देखें कि उनकी अदम कबूली के बावजूद उनके एक सरकर्दा आदमी ने कह दिया कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि मैं जनूबी रियासतों के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक के साथ उसके दफ्तर में गुफ्तगू कर रहा था। वो लुइसविल में बड़ा अच्छा स्पेशलिस्ट है और बड़ा बहादुर शख्स है। मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, जी फरमाएं। मैंने कहा, मैंने आपका तिब्बी निशान आपके अमले के पास देखा है कि एक बल्ली के साथ एक सांप लिपटा हुआ है, ये किस चीज की अलामत है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, ये इसलिए यहाँ लगाया गया है क्योंकि ये इलाही शिफा की अलामत है, इसलिए कि मूसा ने बियाबान में एक पीतल के सांप को बल्ली पर लटकाया था। गौर करें, ये एक अलामत थी, ये अलामत हकीकी मसीह की थी। अब आज दुआई इलाही शिफा की अलामत है, अगरचे उनमें से ज्यादातर इस पर ईमान नहीं रखते। हकीकत पसंद डॉक्टर इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन कुछ इस पर ईमान नहीं रखते। लेकिन उनकी अपनी शनाख्ती अलामत कादरे मुतलिक खुदा की कुदरत की गवाही देती है, खा वो इस पर ईमान लाना चाहे या फिर ना चाहे, समझे। ये सच है, तिब की शनाख्ती अलामत यही है कि एक बल्ली पर एक पीतल का सांप लटका हुआ है। अब इन यहूदियों पर गौर करें। अब इन लोगों की आंखों पर अंधेपन के छिलके थे, वो इसके बगैर रह नहीं सकते थे। वो वहाँ थे और खुदा ने उन्हें वहाँ रखा था, और वो उस जमाने तक इसी हालत में रहेंगे जिसमें उन नबियों के आने का वादा किया गया है। आप जितने चाहे मिशनरी भेजते रहें, जो चाहे कर लें, लेकिन इसराइली उस वक्त तक कभी तब्दील नहीं हो सकते जब तक वो दोनों नबी मंजर पर नहीं आ जाते, और ये गैर कौमों की कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। बैल के जमाने में गब्बर शेर की बुलाहट नहीं हो सकती थी, इसलिए खुदा ने अपने कलाम में फरमाया था और बैल की रूह भेजी गई, और असलाहकारी के जमाने में एक इंसान को भेजा गया, समझे। आप सिर्फ उस चीज को देखें जो वो कबूल कर सकते हैं। उनकी अभी तक उनकी आंखें अंधी हैं। इसकी सारी वजह सिर्फ यही है। अब गौर करें, लेकिन वो जमाना आ रहा है जब गैर कौमों का काम खत्म हो जाएगा। एक दरख्त था जिसकी जड़ें यहूदी थी, उसे काट दिया गया, और फिर जंगली दरख्त को जैतून पर यानी गैर कौमों को पैवंद कर दिया गया, और ये अपना फल पैदा कर रही है। अब जिस वक्त गैर कौमों की दुल्हन यानी दुल्हन के दरख्त को, जिसका मैं जिक्र किया करता हूँ, काट कर खुदा की हजूरी में पहुँचा दिया जाएगा, तो खुदा गैर ईमानदार कौमों को यानी सोई हुई कुमारियों को समेट कर एक तरफ कर देगा, और वो दोबारा पैवंदकारी करेगा। उसने ऐसा करने का वादा किया है, और उस वक्त तक आपको जानने की जरूरत है कि आप कहाँ हैं। अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, फिर सब ठीक है। अगर आप नहीं जानते, तो फिर आप अंधेरे में ठोकरें क्यों खाते फिर रहे हैं। अब यहूदी उस दौर के दौरान तब्दील होंगे। अब कलीसिया जमाने की तरह उस वक्त उस ममसूह वादे की कुदरत के जेरे असर वो मसीह को कबूल करेंगे, मगर उस वक्त तक नहीं जब तक गैर कौमों की कलीसिया मौजूद है। अब हम देख सकते हैं मुकाश्वक 11 बाब के वो नबी किस किस्म के पैगाम की मुनादी करेंगे। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो क्या करेंगे, इसलिए कि यहूदियों का बकिया या 144,000 पहले से मुकरर शुदा लोग खुदा की मोहर हासिल करेंगे। हाँ, जरा पढ़कर देखें। अब बड़े गौर से सुने। अब अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद इसका जिक्र करूंगा। अब ये सातवां बाब है जो कि छठी और सातवीं मोहर के दरमियान है। इन बातों के बाद इन मोहरों के बाद, छठी मोहर के खुलने के बाद, जो कि मुसीबत का दौर है, क्या अब आप तमाम लोग समझ रहे हैं? छठी मोहर खोली गई तो मसाइब का दौर शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर चार फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि जमीन या समुन्दर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। चार फरिश्ते। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से, जिन्हें जमीन और समुन्दर को जर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर ले, जमीन और समुन्दर और दरख्तों को जर ना पहुंचाना। दुल्हन नहीं, बंदों, बेटों नहीं, खादमों। इसराइल हमेशा खुदा का खादम रहा है। पदेशी तौर पर कलीसिया बेटे हैं। गौर करें, इसराइल उसका खादम है। गौर से देखें, हर जगह हमेशा यही बात मिलेगी। इब्राहिम उसका खादम था। हम नौकर नहीं हैं, बल्कि उसके बच्चे हैं, यानी बेटे और बेटियां हैं। जी हाँ, उनके, हमारा खुदा उनके माथे पर, अब तवज्जो दे, हमारा खुदा उनके माथे पर, और जिन पर मोहर की गई, मैंने उनका शुमार सुना। अब मैं चाहता हूँ कि इस तलावत में इनका जिक्र नहायत ही गौर से सुने। और बनी इसराइल के सब कबीलों में से 144,000 पर मोहर की गई। वो पूरी तरह उनके नाम लेता है। अब अगर यहाँ कोई बरतानवी इसराइली साहिब तमीज बैठा हो तो जरा सुने कि ये किस तरह उसकी हवा निकालता है। सुने, यहूदा के कबीला में से 12,000 पर वो कबीला कहलाता है। रूबन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। जद के कबीला में से 12,000 पर। अब यहाँ अपने कबीलों को देखें। और आशर के कबीले में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीले में से 12,000 पर, मनस्सी के कबीले में से 12,000 पर, और शमौन के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। लावी के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। इश्कार के कबीले में से 12,000 पर, मेरा ख्याल है आप इसे अश्कार ही कहते हैं, 12,000 पर। जबुलून के कबीले में से 12,000 पर, और यूसुफ के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई उन सब का, और बिन्यामीन के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। अब 12 कबीले हैं, और हर कबीले में से 12,000 लिए गए हैं। 12,000 जरा 12 कितना होता है? 144,000। अब गौर करें कि ये सब इसराइली कबीले हैं। अब ध्यान दें, इसके बाद अब एक और ग्रोह आता है। अब दुल्हन जा चुकी है, ये हम जानते हैं, लेकिन इस ग्रोह को जाहिर होता देखें। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बरा की तरफ से, और सब कौमें उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़ी हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा किया, कहा, आमीन, हम्द, तमजीद, हिकमत, शुक्र, इज्जत, कुदरत, ताकत, अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने, अब वो बुजुर्गों के सामने है जैसे कि हमने उसे तमाम मोहरों में देखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये कौन है? अब यूहन्ना, जो कि एक यहूदी था, उसने अपने लोगों को पहचान लिया। उसने उन्हें कबाइली सूरत में देख लिया। क्या ये दुरुस्त है? उसने उन्हें पहचान लिया और हर एक कबीले का नाम लिया। लेकिन जब उसने इनको देखा तो उलझन में पड़ गया, और बुजुर्ग ये जान गया, इसलिए उसने कहा, ये कौन है जो सफेद जामे पहने हुए हैं, और कहां से आए हैं? अब यूहन्ना जवाब देता है, मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। यूहन्ना उनको नहीं जानता था। गौर करें, तमाम उम्मते, अहले जुबान और कौमें। और उसने मुझसे कहा, ये वही हैं। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकलकर आए हैं। दूसरे अल्फाज में, बड़ी मुसीबत। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से वो खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और वो उनके दरमियान तख्त पर बैठेगा। ना कभी भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बड़ा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्ला बानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। अब हम सातवीं मोहर के पास पहुंच गए हैं। क्या आपने मुलाहिजा किया, जैसा कि पहले हमने इसराइल से शुरू किया और फिर हम साफ शफाफ कलीसिया को देखते हैं। ये दुल्हन नहीं बल्कि मसाइब से साफ होकर निकली हुई कलीसिया है। गौर करें, तवज्जो दें, आगे बढ़े। ये वो बेशुमार मुखलिस दिल हैं जो उस बड़ी मुसीबत से साफ होकर निकले हैं। ये कलीसिया नहीं बल्कि मेरा मतलब है ये दुल्हन नहीं, क्योंकि वो तो उठाई जा चुकी है, ये कलीसिया है। अब हम जानते हैं कि यीशु ने कहा था इसके कुछ देर बाद तख्त लगेगा, और कैसे उनमें से हर एक तख्ते अदालत के सामने खड़ा हुआ था। अब हम जानते हैं कि यहूदी लोग जिंदा खुदा की मोहर से मोहर बंद किए गए थे। क्या ये सच है? ये यहूदी हैं। जिंदा खुदा की मोहर क्या है? अब मैं किसी के एहसास को मजरू नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसे बयान कर रहा हूँ। गौर करें, क्या आप जानते हैं कि बहुत से आलिम जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, वो दावा करते हैं कि खून से धुला हुआ ये ग्रोह दरअसल दुल्हन है। क्या आप ये जानते हैं कि बहुत से उल्मा का ख्याल है कि ये 144,000 दुल्हन है, जैसा कि कोई चीज यहाँ गलत बयान की गई है। इसलिए यहाँ दुरुस्त चीज का कायम करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ गलत बयान किया गया है। गौर करें, हमारे एडवेंटस भाई कहते हैं कि खुदा की मोहर सब्बत के दिन को मनाना है। क्या आप ये जानते हैं? लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे कलाम का कोई एक शोशा भी दिखाएं जिससे साबित हो कि सब्बत के दिन को मनाना खुदा की मोहर है। समझे, ये तस्वीर किसी इंसान ने कायम किया है। लेकिन अगर आप इफिसियों 4:30 को देखें, तो लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन तक मोहर हुई है। जी जनाब, जब शफायत का काम मुकम्मल हो जाता है, फिर आप आते हैं और मसीह अपने लोगों को निजात देता है और आप पर मोहर हो जाती है, ना कि सिर्फ अगली बेदारी तक। जब एक बार आप पर रूह कुदस की मोहर हो जाती है, तो ये खुदा का एक मुकम्मल काम होता है कि उसने आपको कबूल कर लिया है और अब कोई आपको उससे दूर नहीं कर सकता। आप कहते हैं, ठीक है, मैंने उसे हासिल किया था, फिर मैं दूर चला गया। नहीं जनाब, आपने उसे हासिल नहीं किया था। खुदा कहता है वो मखलसी के दिन तक है। जी हाँ, अब देखिए, आप अभी तक खुदा के साथ इस बात पर बहस करते हैं। आप देखें, इसका मतलब है मखलसी के दिन तक। तवज्जो फरमाए, जैसे वहाँ, जैसे वो चुनाव के मुताबिक बकियां हैं, अब ये यहूदी चुनाव के मुताबिक बकियां हैं, और उस चुनाव के मुताबिक जो यहूदियों के दरमियान एलिया की पहली खिदमत के वक्त हुआ, और खुदा ने अपने हाथ से 7,000 ईमानदारों को बचाए रखा। अब इस बकिया के वक्त, जबकि उनका वक्त आ रहा है, और उस वक्त 144,000 का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो पैगाम उनको दिया जाएगा उसे 144,000 कबूल करेंगे। अब आप कहते हैं, हो एक मिनट भाई साहब, मैं इस चुनाव के बारे में नहीं जानता। अच्छा, मैंने ये पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, आए देखते हैं कि ये सच है या नहीं। आए मत्ती की इंजील में से तलाश करके देखते हैं, हमें इस सिलसिले में कोई बात मिलती है। अब मुझे यकीन है कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मैंने ये हवाला लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये अभी मेरे जेहन में आया है। आए जरा आखिर में 30 आयत को देखें, जहाँ से हमने कल रात पढ़ा था, छठी मोहर के आखिर में 30वीं आयत को देखें। आए अब इसे पढ़कर देखें कि हम कहाँ पहुँचे हैं। 31 आयत को देखें, समझे, और इब्ने आदम को जलाल के साथ आते देखेंगे। अब 31वीं आयत को पढ़ते हैं, और वो अपने फरिश्तों को नरसिंगे की जोरदार आवाज के साथ भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक चारों कोनों से जमा करेंगे।
The elected will come out. What is it? And the tribulation.
देखें, बरगजीदा बाहर आ जाएंगे। ये क्या है? मुसीबत के दौर में खुदा अपने बरगजीदों को बुलाएगा, और ये बरगजीदा उस वक्त के दौरान बुलाए जाने वाले यहूदी हैं। बाइबल ये बताती है, पलूस ने भी यही बयान किया है, उस चुनाव के मुताबिक 144,000 लोग होंगे जो लाखों लोगों में से पैगाम को कबूल करेंगे। एलिया की नबूवत के वक्त फलस्तीन में लाखों लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7,000 बचाए गए। अब चुनाव के मुताबिक जबकि लाखों यहूदी अपने वतन में इकट्ठे हो रहे हैं और एक कौम बन रहे हैं, वहाँ लाखों लोग मौजूद होंगे, लेकिन सिर्फ 144,000 बरगजीदा लिए जाएंगे, वो पैगाम को सुनेंगे। गैर कौमों की कलीसिया में यही बात है, इनमें एक दुल्हन है जो बरगजीदा है और उसे चुनाव के मुताबिक बुलाया जाएगा। गौर करें, ये कलीसिया की कामल तस्वीर है जो कि ईमान लाने वाले बरगजीदा हैं। दूसरे ईमान नहीं लाते। आप ये बता सकते हैं, आप किसी आदमी को सच्चाई बता सकते हैं और उसे कलाम से साबित कर सकते हैं, फिर जाहिर हो जाएगा, तब वो कहता है मैं इस पर ईमान नहीं रखता। आप सिर्फ इसे हमाकत के साथ इस्तेमाल ना करें। यीशु ने इसे मना किया था, उसने कहा था सुचे मोती सुरों के आगे मत डालो, समझे? फिर कहा उन्हें छोड़ दो, ऐसा ना हो कि उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुम्हें फाड़े, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, उनसे दूर हो जाओ, उन्हें छोड़ दो, अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो। थोड़ा अरसा पहले की बात है कि मैं एक शख्स से मिला, वो शख्स अपनी रजा से मेरे पास आया था, वो बहुत से लोगों के साथ इलाही शिफा के खिलाफ बहस करता था। जब वो मेरे पास आया और बोला मैं आपकी इलाही शिफा पर ईमान नहीं रखता, मैंने कहा मेरा ख्याल है इस पर बहस का कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। उसको मैंने कहा मगर खुदा कामिल है, उसने कहा शिफा जैसी कोई चीज नहीं है, मैंने कहा दोस्त आपने ये कहने में बहुत देर कर दी है, ये सच है, बस आपने ये कहने में बहुत तवील इंतजार किया है। आप कुछ साल पहले ये बहस कर सकते थे, लेकिन अब और जमाना है, अब लाखों लोग इसके गवाह हैं, समझे? मैंने कहा दोस्त आपने ये कहने में बहुत देर कर दी है, उसने कहा ठीक है मैं इस पर ईमान नहीं रखता, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा यकीनन नहीं, आप ईमान ला ही नहीं सकते, समझे? उसने कहा आप मुझे अंधा कर दे, और कहा अगर आपके अंदर पालूस की तरह रूल कदूस है, और कहा तो मुझे अंधा कर दे। मैंने कहा आप पहले ही अंधे हैं, मैं आपको अंधा क्या करूं? मैंने कहा आपके बाप ने आपको सच्चाई की तरफ से अंधा कर दिया है। मैंने कहा आप पहले ही अंधे हैं, और उसने कहा मैं ईमान नहीं लाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं आप क्या करते हैं, आप जितने भी सबूत पेश करें या इसके मुतालिक कुछ भी कर लें, मैं फिर भी इस पर ईमान नहीं लाऊंगा। मैंने कहा यकीनन, क्योंकि ये गैर ईमानदारों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ईमानदारों के लिए है, ये सच है, समझे? ये क्या था? गौर करें, ऐसे वक्त आपको मालूम हो जाता है कि चुनाव गुजर चुका है, इसे किसी भी तरह हमाकत के साथ इस्तेमाल ना करें। यीशु ने भी यूं ही कहा था, उसने कहा उन्हें छोड़ दो, अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो क्या दोनों गड़े में ना गिरेंगे? लेकिन जब वो एक कस्बी के पास आया तो जैसे आग का टकराव, ये क्या था? वहाँ एक बरगजीदा बीज पड़ा था, गौर करें, जो फौरन जाहिर हो गया। जब वो पतरस के पास आया तो वहाँ भी एक बरगजीदा बीज मौजूद था, गौर करें, और उसने भी उसे पहचान लिया, जिनको बाप ने मुझे दिया है आ जाएंगे, फिलहाल मुकम्मल, जिनको बाप ने मुझे दिया है वो आ जाएंगे, वो मेरे पास आ जाएंगे, ओ अजीजो मैं इसे पसंद करता हूँ। जी जनाब, तवज्जो फरमाए, ईमानदार इस पर ईमान लाते हैं, गैर ईमानदार इस पर ईमान नहीं ला सकते। अब इसी तरह अगर कोई शख्स सांप की नस्ल और दूसरी बातों पर बहस करना चाहे और आप उसे समझाने की कोशिश करें तो वो नहीं सुनेगा, उससे दूर हो जाए, ऐसों को छोड़ दें। गौर करें, खुदा कभी बहस नहीं करता और ना ही उसके फर्जंदों को करनी चाहिए। गौर करें, ये 144,000 खुदा के बरगजीदा यहूदी हैवान, उसकी तंजीम बंदी, मुजस्मों या किसी और चीज के आगे नहीं झुकेंगे। अगरचे उनकी कौम उस वक्त उसके साथ अहद बांधेगी, इसराइल अहद बांधेगा, लेकिन ये 144,000 ऐसा नहीं करेंगे, ये बरगजीदा हैं। अब बिल्कुल यही चीज गैर कौमों की कलीसिया में भी है, ये एक बरगजीदा ग्रोह है, आप इन्हें इस तरह की चीज की तरफ खींच नहीं सकते, वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे। नहीं जनाब, एक दफा जब रोशनी से वाकिफ हो चुके तो उसी वक्त फैसला हो चुका, वो उसे देखते, वो उसे वाकया होते देखते हैं और फिर उसे जाहिर और साबित होता हुआ देखते हैं, और फिर वो बाइबल में तलाश करके देखते हैं कि कलाम पूरा हो रहा है। अब मजीद उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो उस पर ईमान ला चुके हैं। यही मुकम्मल बात है, ये सच है। अगरचे वो इसकी वजाहत नहीं कर सकते, लेकिन वो जानते हैं कि वो उसे हासिल कर चुके हैं। जैसे मैं कहा करता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ वो हकीकत है। जी हाँ, ठीक है। ये वक्त छठी और सातवीं मोहर के दरमियान है जब उसने उन लोगों को बुलाया जिनका जिक्र यसु ने मत्ती 24:31 में किया था, जिसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। गौर करें, यहाँ नरसिंगा दो गवाह जो के जिस दौर में यहूदियों पर फजल होगा, दो गवाह नरसिंगा फूकेंगे, उसमें एक नरसिंगा फूका जाएगा। आप गौर करें तो ये एक नरसिंगा होगा, वो कहता है और नरसिंगा फूका जाएगा। अब यहाँ 31वीं आयत पर गौर करें, और वो अपने फरिश्तों को, एक नहीं गौर करें दो को, नरसिंगे की जोरदार आवाज के साथ भेजेगा। ये क्या है? जब खुदा बोलने को तैयार होता है तो एक नरसिंगे की आवाज आती है। उसकी ये आवाज हमेशा रही है जो जंग के लिए बलाहट है, समझे? खुदा फरमाता है ये फरिश्ते नरसिंगे की आवाज के साथ आएंगे, और आप देखते हैं कि आखिरी फरिश्ते के पैगाम के वक्त नरसिंगा फूका गया। पहले फरिश्ते के पैगाम के वक्त नरसिंगा फूका गया, और दूसरे फरिश्ते को जब भेजा गया तो नरसिंगा फूका गया, और जब उसने उसे भेजा, और करें, जब मोहरों का ऐलान किया गया तो लोगों के एक ग्रोह को बुलाने के लिए वो एक अजीम इलाही चीज के अंदर थी। एक नरसिंगा फूका गया और सात मोहरें खोली गईं। गौर करें, आसमान के चारों कोनों से उसके बरगजीदा यहूदी इकट्ठे होंगे। उसने छह मोहरों का जिक्र किया है जो कि हम देख चुके हैं, लेकिन सातवीं का नहीं। यहाँ उसने किसी जगह सातवीं मोहर का कुछ भी बयान नहीं किया। गौर करें 32वीं आयत में बरगजीदा यहूदियों को बुलाने के लिए वक्त के मुतालिक एक तमसील बयान की गई है। अब यहाँ गौर से देखें, समझे? वो अपने फरिश्तों को नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ भेजेगा, वो उसके बरगजीदों को आसमान के चारों कोनों से जमा करेंगे। अब वो शुरू करता है, गौर करें, वो यहाँ सातवीं मोहर के मुतालिक कुछ नहीं कहता, समझे? उसने छह मोहरें बयान की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। लेकिन गौर करें, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जब उसकी डाली नरम होती और पत्तियां निकलती हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होता हुआ देखो तो जान लो वो नजदीक है, बल्कि दरवाजे पर है। शागिर्दों ने उससे आखिरी सवाल ये पूछा था कि दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। जब तुम इन यहूदियों को देखो, जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो, तो जान लो कि अब क्या वकूमे आने वाला है। जब तुम इन यहूदियों को देखो, वो यहूदियों से बात कर रहा था। अब ध्यान दें, वो किस मजलिस से मुखातिब है? क्या गैर कौमों से? यहूदियों से, समझे? फिर उसने कहा, मेरे नाम के सबब से तमाम कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और अब भी ऐसा ही है। अब जिस वक्त उसने कहा, आप देख रहे हैं कि यहूदियों ने अब पत्तियां निकालना शुरू कर दी हैं। अब इसराइली वापस आकर अपने मुल्क में दाखिल होने लगे हैं। जब वो वहाँ आ गए हैं तो कलीसिया उठाए जाने के लिए तैयार है, और पुरानी दुनिया के खात्मे के आखिरी 3.5 साल रह गए हैं। अब वो बेतरतीबी का शिकार है, और नई जमीन पर 1000 साल बादशाह आने वाली है। उसने कहा, बल्कि दरवाजे पर है। अब अगर जमीन पर 1000 साल हैं, तो खुदा के करीब एक दिन के बराबर हैं, तो 3.5 साल किस वक्त के बराबर होंगे? खुदा के वक्त के मुताबिक चंद सेकंड है। इसलिए यीशु ने कहा था कि वो दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए। क्या चीज खत्म नहीं होगी? लोगों ने हमेशा यहूदियों को रूहे जमीन से खत्म कर देने की कोशिश की है, मगर वो कभी उन्हें खत्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन गौर करें, यहूदियों की जो पुश्त फलस्तीन की तरफ वापसी को देखेगी, वही पुश्त इन बातों को वकूफ में आते हुए देखेगी। अब 2 साल गुजर चुके हैं कि वो अपने सिक्के और बाकी चीजों के साथ पूरी तरह एक मुल्क बन गया है। अब वो मौजूद है। अजीजो, अब हम कहाँ पर हैं? मोहरें और बाकी चीजें खुल चुकी हैं, और अब हम इस दरमियानी वक्त में हैं। ये मौजूद है। क्या आप समझ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, मेरी तालीम कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ। शायद मैं आपको समझाने के लायक इसकी वजाहत ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा उलझे हुए अल्फाज को अलग करके दुरुस्त कर देगा और आपको समझा देगा कि ये क्या है। इसी सबब हम दरवाजे पर हैं, हम उसी वक्त में हैं। अब गौर करें, देखें, ठीक उसी दौर में वो अपना रुख यहूदियों की तरफ करता है, जो कि आखिरी वक्त होगा। अब हम ये भी जानते हैं, हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उनके कबीले बिखरे हुए हैं, वो 2500 साल से बिखरे हुए हैं। उनके बिखरने के मुतालिक 4 हवाओं के रुख पर नबूवत की गई थी। क्या आपको ये इल्म है? हम जानते हैं, इसलिए हम इस हवाले को तलाश करके पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं एक और नहायत अहम बात आपके सामने लाना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप थक जाएं और भी नडाल हो जाएं। गौर करें, हम हर एक कबीले को जानते हैं। आप इसको कबीलों का इल्मे तवारीख कहें या इल्मे अर्जियात, कबीलों के मकामात अब यकजा नहीं है, वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। जो यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे हैं वो नहीं जानते, वो खुद भी अपने कबीलों को नहीं जानते, उनके कबीले वार झंडे या निशानियां नहीं हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो यहूदी हैं। उनके हक में नबूवत की गई थी कि वो दुनिया में इस हाल में होंगे। अब उनकी किताबें जाया हो चुकी हैं, वो नहीं जानते। आप कहते हैं आप कौन से कबीले से हैं? मैं नहीं जानता कौन सा कबीला है, मैं नहीं जानता। एक बिन्यामिन से है तो दूसरा किसी और से और तीसरा किसी और से, वो नहीं जानते वो कहाँ के हैं। जंगों के दौरान और 2500 सालों के दौरान उनके शिजरे जाया हो चुके हैं। वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, वो यहूदी हैं, बस यही कुछ है। इसलिए वो जानते हैं कि वो अपनी सरजमीन में वापिस आ चुके हैं। वो अभी भी देखें, अगरचे वो अपने कबीलों को नहीं जानते, मगर खुदा जानता है। मुझे ये बात अच्छी लगती है। आप जानते हैं, उसने यहाँ तक कहा था, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। वो किसी चीज को जाया नहीं होने देता, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। अगरचे उनके कबाली झंडे गुम हो गए हैं और वो नहीं जानते कि कोई कौन है और वो फलां है या फलां से हैं, वो नहीं जानते वो बिन्यामिन के कबीले से हैं या रूबन के कबीले से या आश्कार के कबीले से या किसी और से, लेकिन तो भी खुदा उन्हें यहाँ बुलाता है। अब गौर करें कि मुकाशवा 7वें बाब में हमने ये पढ़ा है, 12,000 हर कबीले में से, उन सब में से जो चुने गए हैं, हर कबीले में से 12,000 बरगजीदा लिए गए हैं और तरतीब से यहाँ रखे गए हैं। ओ मेरे खुदाया, वो क्या है? वो कबीलों की तरतीब में है। अभी तक वो इस तरतीब में नहीं है, लेकिन वो होंगे। वो कबायली तरतीब में है। कबायली तरतीब में क्या होगा? तमाम यहूदी नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि 144,000 बरगजीदा यहूदी ही कबायली तरतीब में रखे जाएंगे। हो मेरे खुदाया, आपको ये बताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसे छेड़ेंगे नहीं, जी हाँ, लेकिन कलीसिया को ठीक तरतीब में होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से गौर करें और एक मिनट मेरे साथ पढ़ें। यहाँ एक बात है जो शायद आपने कबीलों की बुलाहट में पहले कभी नोट ना की हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मुकाशवा 7वें बाब पढ़ने को कहा था। मेरे साथ पढ़ें और इन कबीलों को देखें।
Dan and Ephraim is missing and not numbered with them.
मुकाशवा 7वें बाब में दान और इफ्राहिम गायब हैं और बाकियों के साथ शुमार नहीं किए गए। क्या आपने ये मुलाहजा किया? इनकी जगह यूसुफ और लावी को दे दी गई है। क्या आपने इस बात पर गौर किया? दान और इफ्राहिम वहाँ मौजूद नहीं है, नहीं जनाब, बल्कि लावी और यूसुफ को दान और इफ्राहिम की जगह पर रखा गया है। क्यों? वो हमेशा याद रखने वाला खुदा अपने कलाम के तमाम वादों को हमेशा याद रखता है। हो, मैं इस पर पैगाम देना चाहूंगा, समझो। अगरचे कभी कभी ऐसा लगता है लेकिन खुदा कोई बात नहीं भूलता। जैसे खुदा ने मूसा को बताया था, इसराइल 400 साल से मिस्र में थे, उन्हें निकालने का वही वक्त था। खुदा ने इब्राहिम को बताया था कि उसकी औलाद 400 साल तक गैर मुल्क में परदेसी रहेगी और फिर खुदा उन्हें जोर आवर हाथ से निकाल ले जाएगा। लेकिन उस वक्त खुदा ने मूसा से कहा कि मैंने अपने वादे को याद किया है, अब मैं नीचे आया हूँ ताकि उसे पूरा कर दिखाऊं। खुदा कभी नहीं भूलता, वो बरकतों को कभी नहीं भूलता और ना ही कभी लानतों को भूलता है, बल्कि वो जो भी वादा करता है उस पर कायम रहता है। अब अगर आप गौर करें तो यही वजह है कि ये दोनों यहाँ गायब हैं। अब पढ़ें, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इसे पढ़ें। अस्तिश्ना में चलें 20 बल्कि 29वीं आयत या 29वें बाब में देखें। यहाँ पर इन कबीलों के गायब हो जाने की वजह लिखी है। हर काम के लिए कोई ना कोई उसका सबब मौजूद होता है। अस्तिश्ना, हम अस्तिश्ना के 29वें बाब को निकालेंगे। अब खुदावंद इसे समझने में हमारी मदद करे। अब हम अस्तिश्ना 29वें बाब की 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। अब सुने मूसा का बयान। तुम खुद जानते हो कि मुल्के मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरूह चीजें और लकड़ी, पत्थर, चांदी, सोने की मूर्तें देखी जो उनके हाथ थी। हर किसी के पास कोई ना कोई चीज मौजूद थी, या किसी के पास सेंट सिसिलिया की मूर्ति थी। आप इस तरह की चीजों को जानते हैं, समझे? इसलिए ऐसा ना हो के, सुने, ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द, औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तुति करे, या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो कड़वी चीज और तल्ख बूटी पैदा करे। और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने आप को मुबारक दे और कहे कि मैं अगरचे मैं अपने दिल के ख्यालों के मुताबिक चलूं, तो भी मेरे लिए सलामती है। देखें, लोग कहते हैं वो अपने आप को मुबारक कहता है। आप जानते हैं, अब लोग छोटी सी सलीब या कुछ और बनाकर गले में डाल लेते हैं। आप जानते हैं, ये भी वैसी ही बात है, समझे? क्या आप समझ नहीं रहे कि ये बुत प्रस्त तासीर है? गौर करें कि ये बुत प्रस्ती है। वो अपने दिल ही दिल में अपने आप को मुबारक देता है। वो अपने तस्वुरात की पैरवी में चलता है। वो पानी की जगह शराब पीता है और वो कहते हैं शराब पिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप गिरजाघर में जाते रहेंगे आप ठीक है। पर खुदावंद उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि खुदावंद का कहर, उसकी गैरत का धुआं उस आदमी के खिलाफ भड़केगा और सब लानते जो इस किताब में लिखी हैं, उसमें ना कोई लफ्ज शामिल करें और ना कोई लफ्ज निकालें, समझे? उस पर पड़ेंगे और खुदावंद उसको मिटा देगा, और खुदावंद उसके नाम को आसमान के नीचे से मिटा देगा। ये उस वक्त तक है जब तक वो शख्स जमीन पर है। गौर करें, आसमान के नीचे। और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं, उसे इसराइल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा। इसलिए अगर कोई आदमी किसी बुत की प्रस्तुति करे या कोई बुत अपने पास रखे और अपने दिल ही दिल में अपने आप को मुबारक देता रहे और अपने तस्वुरात की पैरवी में चलता है और बुतों की पैरवी करता है, तो खुदा कहता है मर्द, औरत, खानदान या कबीले का नाम लोगों के दरमियान से बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। अब क्या ये दुरुस्त है? ये कितना सच है? बहुत साल पहले बुत प्रस्ती ने कलीसिया में यही कुछ किया और आज भी कर रही है। और मैं देखता हूँ, गौर करें, मुखालिफ मसीह ने किस तरह एक मुखालिफ तहरीक शुरू करने की कोशिश की। कितने लोग जानते हैं शैतान किस तरह खुदा की तशबीहात की नकल करता है? गुनाह, गुनाह क्या है? दुरुस्त चीज का उल्ट। झूठ क्या है? सच की गलत तफसीर। जनाकारी क्या है? दुरुस्त अमल और कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल, समझे? अब तक इसकी कोशिश की जा रही है कि एक नाम मिटा दिया जाए। क्या आपने गौर किया है, कलीसिया जमानों में उसी हैवान ने जो मरे हुए लोगों की मूर्तियों की प्रस्तुति करता था और वगैरह वगैरह, उसने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिटाकर उसकी जगह बाप, बेटे और रूह कुदस के अलकाब दे दिए। इसी तरह की लानत इससे पहले भी दी जा चुकी है। दान और इफ्राइम ने ये काम इसराइल के एक दगाबाज बादशाह यरोबाम की रयाकारी की पैरवी में की। अब पहले सलातीन 12वें बाब में देखिए, मैं जानता हूँ हम यहाँ मेरे मुताबिक ऐसा 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 पसे मंजर है जिस पर हम इंसार कर सकते हैं उसके लिए जिसे हम देख रहे हैं। पहले सलातीन में मैं चाहता हूँ 12वें बाब की 25 से 30वीं आयत तक पढ़ें। तब यरोबाम इफ्राहिम के कोस्तानी सिक्कम में रहने लगा और वहाँ से निकलकर और फनुएल को तामीर किया। और वहाँ यरोबाम ने कहा, यरोबाम ने अपने दिल में देखे, ये उसके दिल का ख्याल था कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि वो खौफजदा था क्योंकि लोग बाहर निकल सकते थे। अगर ये लोग यरूशलेम में खुदावंत के घर में कुर्बानी गुजराने को जाया करें तो इनके दिल अपने मालिक यानी यहूदा के बादशाह रुबहाम की तरफ माइल हो जाएंगे और वो मुझे कत्ल करके शाह यहूदा रुबहाम की तरफ फिर जाएंगे। इसलिए उस बादशाह ने मशवरत लेकर सोने के दो बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। ऐ इसराइल, अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाए। उसने एक को बैतेल में कायम किया और दूसरे को दान में रखा और ये गुनाह का बाइस ठहरा क्योंकि लोग उस एक की प्रस्तुति करने के लिए दान तक जाने लगे थे। गौर करें, उसने एक बुत इफ्राइम के इलाके बैतेल में और दूसरा दान में नसब किया और लोग उनकी पूजा करने के लिए जाने लगे। और अब जबकि हम तकरीबन 1000 साल बादशाहत में दाखिल होने वाले हैं, तो खुदा को अब भी वो गुनाह याद है। कबीलों में उनका नाम शुमार ही नहीं किया गया। देखें, खुदा को जलाल मिले। जिस तरह खुदा हर अच्छे वादे को याद रखता है, उसी तरह हर लानत को भी याद रखता है। वो पूरी तरह याद रखता है। बस अजीजो, इसीलिए मैं इस पर ऐसा ईमान रखता हूँ कि मैंने हमेशा कलाम को कायम रखने की कोशिश की है, खा वो कितना ही अजीब दिखाई देता हो। अब देखें, वो इसके मुतालिक कुछ नहीं सोचेंगे। उन्होंने उस वक्त भी कुछ नहीं सोचा था। वो सोचते थे शायद दूसरों ने भी इसी तरह पाया है, बस सब ठीक है। लेकिन यहाँ वो समझते हैं कि 1000 साल बादशाह के वक्त में हम भी शामिल होंगे, जबकि उनके और उनके कबीलों के नाम इसमें से मिटा दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने बुतों की प्रस्तुति की थी और इसी सबब खुदा ने उन पर लानत की। क्या खुदा ने नहीं कहा था कि वो नकीलियों और एजबल से नफरत करता है, उससे अलग हो जाओ? क्या उसने कहा नहीं था कि वो एजबल की बेटियों को जान से मारेगा जो खुदा की हजूरी से अबदी जुदाई है? उस पर हरगिज भरोसा ना करें, उससे दूर हो जाएं। बस खुदा याद रखता है। गौर करें, लेकिन क्या आपने वहाँ गौर किया कि उसे मिटना ही था? क्यों? आसमान के नीचे कोई ऐसी फौरी कुर्बानी ना थी जो उसे रूह कुदस दे सकती, जिससे वो इन बातों को जान सकता। लेकिन उसने उसे अपने खुद गर्ज जहन की सोच के मुताबिक किया। लेकिन हिजकियल 1000 साल बादशाह की रोया में उनको फिर मुकम्मल सूरत में देखता है। हिजकियल, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लें, वरना वक्त बचाने के लिए आप बस लिख लें। हिजकियल 48:1-7, इसके अलावा 23-29 आयात को भी पढ़ लें। हिजकियल ने तमाम कबीलों को तरतीब में देखा, ठीक है। और अब मुकाशवत 14वें बाब में यूहन्ना ने भी उन्हें कबीलों की तरतीब में देखा। ये दुरुस्त है, हर कबीला अपनी जगह पर था। क्या वाक्या हुआ? क्या आपको याद है कि उसने कहा आसमान के नीचे, यानी उसका नाम कबीले की हैसियत से मिटा दिया गया। जब तक आसमान के नीचे है तब तक कुछ ना होगा और 144,000 अभी कबायली हिस्से में है, ये सच है। लेकिन आप देखते हैं कि उनकी आंखें बंद थी, वो बैलों और बड़ों की कुर्बानियों पर ही कायम थे, समझे? अब तवज्जो फरमाएं, उसने आसमान के नीचे उनको मिटा दिया। लेकिन अगर गैर कौमों के लोग रूह कुदस के जमाने में उसकी मुखालफत करते हैं तो उनका नाम किताब हयात से पूरे तौर पर मिटा दिया जाएगा और उनके लिए ना तो इस जहान में माफी है और ना आने वाले जहान में कोई गुंजाइश है? क्या ये सच है? ये मकाम है जहाँ हम खड़े हैं। भेड़ों और बकरों के मुताबिक इसराइल के कबीलों को भी एक मकाम हासिल है जब तक वो इस जमीन पर हैं, लेकिन उनके कबीले शामिल नहीं हैं, वो कभी शामिल नहीं होंगे। अब सब जब खुदा ने 144,000 को बुलाया तो वहाँ पर वो दो कबीले नहीं थे। ये सच है, उन्हें वहाँ शुमार नहीं किया गया और दान और इफ्राहिम की जगह यूसुफ और लावी को रखा गया। अब आप इस पर निगाह कर सकते हैं, ये ठीक आपके सामने है, समझे? और ये खुदा का वो वादा है जो उसने हजारों साल पहले किया था। अब क्या हुआ, क्या होता है? उन्हें बड़ी मुसीबत के दौर के दौरान साफ किया जाता है। अब अगर खुदा उस कुंवारी को जो अच्छी औरत थी लेकिन वो अपनी मिशन के लिए तेल साथ लेने में नाकाम रह गई थी और उसे सजा के जरिए साफ किया गया, तो फिर वो इन दो कबीलों के लिए भी यही कुछ करेगा। वो उनको भी मुसाइब के दौर में साफ करेगा, इसलिए कि ये एक सफाई है, ये अदालत है। लेकिन आप देखते हैं कि वो इसके बाद, जरा यहाँ देखें, इसराइल की सफाई के अमल के बाद 144,000 निकल कर आते हैं और साथ ही बेवकूफ कंवारियाँ भी साफ होकर निकल आती हैं और वो सफेद जामे पहने हुए हैं, समझे? ये कितनी कामिल और कितनी खूबसूरत बात है। जिस तरह यकूब उस मुश्किल घड़ी में से गुजरा, समझे? वो यानी यकूब उस मुश्किल घड़ी में से गुजरा, उसने बुराई की थी लेकिन उसे सफाई के दौर में से गुजरना पड़ा क्योंकि उसने अपने भाई ईसाऊ के साथ बुराई की थी, समझे? उसने पहलौटे का हक लेने के लिए भाई को धोखा दिया लेकिन उसे पाक किए जाने के दौर में से गुजरना पड़ा, इससे पहले कि उसका नाम यकूब से तब्दील करके इसराइल रखा जाता, जो कि आज के जमाने में खुदा की तशबीह का नमूना था। अब हम आठवीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि पहली आयत की तरफ, मेरा मतलब है आठवें बाब की तरफ, यानी मुकाशवा 8:1 की तरफ। मैं जानता हूँ आप थक गए हैं, लेकिन अब सिर्फ चंद मिनट और सुनने की कोशिश करें और मेरी दुआ है कि आसमान का खुदा हमारी मदद करे। हमें याद रखना चाहिए कि ये सातवीं मोहर तमाम चीजों के वक्त का खात्मा है। ये सच है, सात मोहरों की किताब जिसमें निजात का सारा मनसूबा बनाए आलम से पेशतर मोहर बंद कर दिया गया था, तमाम बातों का यहीं पर इख्तिताम होता है। ये इख्तिताम है, ये दुनिया की तमाम जद्दोजहद का इख्तिताम है, ये फितरत की मुशक्कतों का इख्तिताम है, ये हर चीज का इख्तिताम है और यहाँ पर नरसिंगों का भी इख्तिताम है, यहाँ प्यालों का भी इख्तिताम है, ये जमीन का इख्तिताम है और ये वक्त का भी इख्तिताम है। वक्त खत्म हो जाएगा, ऐसा बाइबल बयान करती है। मत्ती 7वां बाब, मेरा मतलब है मुकाशवा 7वां, बल्कि 10वां बाब और उसकी 1-7 आयत था। जब वक्त खत्म हो जाता है, फरिश्ते ने कहा अब और देर ना होगी। जब ऐसा होगा उस रोज ये अजीम बात वकू में आएगी और इस सातवीं मोहर के आखिर पर हर एक चीज का, बल्कि वक्त का भी इख्तिताम हो जाएगा। तो ये कलीसिया जमाने का भी इख्तिताम है और ये सातवीं मोहर का भी इख्तिताम है और ये नरसिंगों का भी इख्तिताम है और ये प्यालों का भी इख्तिताम है, हत्ता के हजार साल बादशाह को लाने के लिए ये इख्तिताम होगा और ये इसी सातवीं मोहर पर होगा। और ये ऐसे ही है जैसे हम हवा में कोई रॉकेट छोड़ते हैं और वो रॉकेट यहाँ से उड़ता है और ऊपर जाता है और फटता है और उसमें से मजीद 5 सितारे निकल आते हैं और फिर उनमें से 1 सितारा फटता है और उसमें से मजीद 5 सितारे निकल आते हैं, फिर उनमें से एक और फटता है और उसमें से मजीद 5 सितारे निकल आते हैं और देखे आखिर को वो खत्म हो जाता है। और इसी तरह ये सातवीं मोहर है जो दुनिया के वक्त का खात्मा कर देती है, ये इस वक्त का खात्मा कर देती है, ये उस वक्त का भी खात्मा कर देती है, ये वक्त का आखिर है। सातवीं मोहर पर आकर हर चीज का खात्मा हो जाता है। अब ये काम खुदा किस तरह करने जा रहा है और ये ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, क्या ऐसा ही नहीं? हम नहीं जानते, हत्ता कि ये वक्त तमाम चीजों के लिए और हजार साल बादशाहत में दाखिल होने का है। गौर करें कि इस मोहर का खुलना इतना अजीम था कि इसके बायस आसमान पर आधे घंटे तक खामोशी छाई रही। अब देखें ये कितनी अजीम बात है, ये क्या है? इसके बायस आसमान पर खामोशी छाई रही और आधे घंटे तक किसी चीज ने जुम्बश ना की। अब अगर आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं तो आधा घंटा कोई तवील वक्त नहीं होता, लेकिन मौत और जिंदगी के दरमियान 605 की हालत में हजार साल दौर जैसा लगता है। ये इस कदर अजीम थी, यीशु ने भी कभी भी इसका जिक्र नहीं किया और ना ही किसी और ने जिक्र किया। यूहन्ना भी इस कैफियत को ना लिख सका, हरगिज नहीं, बल्कि उसे इसे लिखने से मना कर दिया गया। गौर करें, वहाँ तो सिर्फ खामोशी थी और वो इसके मुतालिक कुछ भी नहीं लिख सका। और 24 बुजुर्ग जो खुदा के हजूर खड़े होते हैं और वहाँ अपनी बरबत को बजाते रहते हैं, उन्होंने अपनी बरबतों को बजाना बंद कर दिया। फरिश्तों ने आसमान पर अपना गाना बंद कर दिया। जरा सोचें, मुकद्दस करूबियों और सराफीम को जन्म लाए, जिनको यसाया ने हैकल में देखा, जिनके 6 बल्कि 3 की तर्तीब में पर थे, 3 से बल्कि 2 से अपना चेहरा और 2 से अपने पांव डांपे थे और 2 के साथ उड़ते थे, और वो दिन और रात खुदा की हजूरी में पुकारते रहते थे, कदूस कदूस कदूस, खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक है। यहाँ तक कि जब वो मुकद्दस हैकल में दाखिल हुए तो उनकी हैबत से हैकल के सतून हिल गए। ये सराफिम भी खामोश हो गए। फरिश्तों ने गाना रोक दिया। जी हाँ, जो खुदावंत की हजूरी में उड़ते हुए गाते थे और कदूस 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 पुकारते थे, वो खामोश हो गए। ना फरिश्तों का गाना, ना स्ताइश, ना कुर्बानगाह की खिदमत, कुछ भी ना रहा और सुकूत छा गया और आसमान पर आधे घंटे तक सन्नाटा और खामोशी छा गई। मखलसी की किताब की 7वीं मोहर के भेद को जब खोला गया तो आधे घंटे तक आसमानी लश्कर खामोश हो गया और सन्नाटा छा गया। इस पर गौर करें, लेकिन ये टूट गया, बड़े ने से तोड़ डाला। अब जानते हैं ये क्या था? मुझे यकीन है कि ये उसके रोब के सबब था। वो नहीं जानते थे कि वहाँ ऐसा था। वो फक्त खामोश हो गए। क्यों? ये क्या है? अब देखें, हम में से कोई भी इसके मुतालिक नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इसके मुतालिक अपना मुकाशवा बताने जा रहा हूँ। और अब देखें कि मैं तस्सुब की तरफ बिल्कुल माइल नहीं हूँ। देखें, अगर मैं ऐसा हूँ तो फिर मैं इससे बेबहरा हूँ, इसलिए कि मुझे टेढ़ी नजर या अंधी तलकीद और तस्वुराती चीजें नहीं दी गई। मैंने कई ऐसी बातें बयान की हैं जो कुछ लोगों के लिए अजीब हो सकती हैं, लेकिन जब खुदा इनके पीछे आ खड़ा होता है और इन्हें साबित करके सच्चा करार देता है, तो फिर ये खुदा का कलाम होता है, समझे? वरना ये किसी भी तरीके से अजीब हो सकती हैं, समझे? अब देखें, जैसे मैं हकीकत में आज रात इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, इसी तरह ये मुकाशवा मुझ पर जाहिर किया गया है। ये एक सा पहलू मामला है और मैं इसके एक पहलू पर खुदा की मदद से आपके सामने बोलूंगा। और फिर आप, लेकिन आए पहले वहाँ चले। ये वो मुकाशवा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, और वो 7 गर्जें जो के उसने सुनी और उसे लिखने से मना कर दिया गया, उनके दरमियान क्या हुआ, ये वो राज है जो उन 7 मुसलसल गर्जों के पीछे पोशीदा है। अब देखें, ऐसा क्यों है? आए हम इसे साबित करें कि ऐसा क्यों है। ये एक भेद है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और यूहन्ना को भी इसके बारे में लिखने से मना कर दिया गया था। यहाँ तक कोई अलामत तक नहीं लिखी, उससे भी मना कर दिया गया। क्यों? इसलिए तो आसमान पर कोई सरगर्मी ना हुई, इससे भेद जाहिर हो सकता था। क्या अब आप इसे समझ गए? अगर ये इतनी अजीम बात है तो फिर इसे शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये वाकई होगी। लेकिन जब 7 गर्जें, अब तवज्जो दें, जब 7 फरिश्ते अपने नरसिंगे फूंकने के लिए आगे आए तो एक गर्ज पैदा हुई। जब इसराइली इकट्ठे हुए तो एक नरसिंगा फूंका गया। जब मजीद कोई वक्त ना होगा, यानी आखिरी नरसिंगा होगा, तब भी एक गर्ज होगी। लेकिन यहाँ लगातार गर्ज की 7 मुसलसल आवाजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि एक मुकम्मल अदद है। 7 लगातार गर्जें, ये मुकम्मल थी, और ये गिनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार। और उस वक्त आसमानी उसे लिख नहीं सकते थे, आसमानी उसे नहीं जान सकते थे, और ना ही कोई और जान सकता था, क्योंकि अब और कुछ नहीं होना था। ये आराम करने का वक्त था। ये इतना अजीम था कि इसे फरिश्तों से भी पोशीदा रखा गया। अब ऐसा क्यों था? अगर शैतान इसे जान लेता तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। यही वो बात थी जो वो नहीं जानता। अब जिस चीज में शैतान चाहे मुदाखलत कर सकता है और वो किसी भी किस्म की नेमत की नकल कर सकता है। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन वो इस भेद को नहीं जान सकता। हत्ता कि ये कलाम में भी नहीं लिखा गया। ये मुकम्मल तौर पर एक भेद है। फरिश्तों हत्ता के हर एक चीज ने खामोशी इख्तियार कर ली। अगर वो एक हरकत भी करते तो शायद कोई चीज बाहर निकल जाती। इसलिए वो खामोश हो गए और बरबतों को बजाना बंद कर दिया और हर एक चीज रुक गई। सात खुदा का मुकम्मल अदद है। सात ये एक से लेकर सात तक मुकम्मल तरतीब है। सात गर्जे इस तरह तरतीब वार इकट्ठी सुनाई दी जैसे किसी लफ्ज के हिज्जे होते हैं। तो जो करे, और उस वक्त योहन्ना ने उसे लिखने का इरादा किया और उसने कहा इसे मत लिख। यीशु ने उसे कभी बयान नहीं किया। योहन्ना भी उसे लिख ना सका और फरिश्ते भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये क्या है? यही वो बात है जिसके मुतल्लिक यीशु ने कहा, यहाँ तक कि आसमान के फरिश्ते भी नहीं जानते। वो भी इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते, समझे समझे। यहाँ तक कि उसने खुद कहा, मैं भी इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता, बल्कि उसने कहा सिर्फ खुदा ही इसके मुतल्लिक जानता है। लेकिन उसने हमें ये बताया कि जब हम इन निशानों को होते हुए देखें, क्या अब आप किसी मकाम पर पहुंच रहे हैं? तो ठीक है, फिर तवज्जो करें। जब हम इन निशानों को होते हुए देखें, समझे, अगर शैतान इसे जान लेता, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज वजूद में आए, तो अब आपको इसके लिए मेरे अल्फाज कबूल करने होंगे। अगर मैं किसी काम की मंसूबा बंदी करता हूँ तो मैं किसी भी दूसरे शख्स के बताने से ज्यादा बेहतर समझता हूँ। वो नहीं, बल्कि जब कोई दूसरा शख्स कुछ कहेगा तो शैतान उसे सुन लेगा। देखे, जब तक खुदा रूल कुदस की कुदरत से मेरे दिल को बंद रखेगा, तब तक शैतान उसे मेरे दिल से नहीं जान सकेगा। ये सिर्फ मेरे और खुदा के दरमियान रहेगी, समझे। और जब तक आप उसके मुतल्लिक बयान नहीं करते, तब तक वो जान नहीं पाता, और जब बयान करते हैं तो तब वो उसे सुन लेता है। और जैसे कि मैं लोगों के दरमियान कोई काम करने की कोशिश करूं, तो देखें शैतान उस तक पहुंचे और मुझे गिराने के लिए सर तोड़ कोशिश करे। लेकिन अगर मुझे खुदा की तरफ से कोई मुकाशवा हासिल हुआ हो और मैं उसके बारे में कुछ ना कहूं, तो फिर ये मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। याद रखें, शैतान नकल करने की कोशिश करेगा। वो हर उस काम की नकल करने की कोशिश करेगा जो कलीसिया करेगी। उसने ये कोशिश की है और हमने इस बात पर ध्यान दिया कि उसने मुखालफ मसीह में होकर ऐसा किया। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी वो नकल नहीं कर सकता। गौर करें, इसका कोई बहरूप नहीं बना सकता, क्योंकि वो इसके मुतल्लिक जानते ही नहीं। इसके मुतल्लिक जानने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं है। ये तीसरा खिंचाव है। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, समझे। वो इसे नहीं समझ सकता, लेकिन इसके नीचे एक भेद पोशीदा है। आसमान के खुदा को जलाल मिले। जब मैंने ये देखा तो मैं अपनी बाकी जिंदगी में कभी इस तरह नहीं सोच सका। अब मैं नहीं जानता ये क्या है। मैं इसे अगला कदम जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता ये क्या है। मैं इसकी वजाहत कैसे करूँ? ये ज्यादा तवील नहीं होगी। जब ये सामने आया तो मैंने इसे लिख लिया। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। रुक जाएं, यहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं जाना। मैं जुनूनी बनने पर माइल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन क्या आप उस छोटे जूते के मुतालिक याद है? मैंने अक्सर बयान करने की कोशिश की है कि जब रूह किसी अगले शख्स की तरफ बढ़ता है तो कैसे उनके तहतिल शौर और दूसरी बातों को दरियाफ्त कर लेता है। तो कैसे इस खिदमत के आगाज के बाद एक बड़ी भीड़ ने इसकी नकल करना शुरू कर दी। कैसे वो लोगों को लेकर उनके हाथों को पकड़ते थे और उनके हाथों में हरकत पैदा होने लग जाती थी, और फिर उनमें से हर एक के हाथों में हरकत पैदा होने लग गई। लेकिन आपको याद होगा कि जब खुदा मुझे ऊपर ले गया और उसने कहा ये तीसरा खिंचाव है और इसे कोई समझ नहीं पाएगा, क्या आपको ये बात याद है? बस रोयाएं कभी नकाम नहीं होती, वो कामिल सच्चाई है। अब तो जो करें, क्या आपको सात फरिश्तों के झुरमट वाली रोया याद है? चार्ली, मुझे लगा था आप मौजूद है, कुछ वाकया हो रहा है। मैंने आपको बताया था जैसा कि इस हफ्ते ये आप सबके इर्द गिर्द रहा है, और मुझे फिक्र है आया आपने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं। क्या आपको फरिश्तों के झुरमट वाली रोया याद है? जब मैं यहाँ से एरिजोना के लिए रवाना हुआ था, क्या आपको ये पैगाम याद है साहिबो? ये कौन सा वक्त है? क्या आपको ये याद है? गौर करें कि एक धमाका हुआ और सात फरिश्ते जाहिर हो गए। क्या ये सच है? एक ही जोरदार धमाके के साथ सात फरिश्ते जाहिर हुए। मैंने बरे को उस वक्त देखा जब उसने पहली मोहर खोली, और उस वक्त भी जब मैंने गर्ज किसी ये आवाज आती सुनी, और उन चार जानदारों में से एक ने कहा, आ और देख। गौर करें, एक गर्ज से सात मोहर बंद पैगाम जाहिर हुए जो आखिरी जमाने यानी इस जमाने से पहले जाहिर नहीं हो सकते थे। क्या आप मेरा मतलब समझ गए? अब क्या आपने इस हफ्ते के पुरअसरार हिस्से पर गौर किया है? ये वही चीज है, ये वही है जो हमेशा रहा है। ये कोई इंसानी मखलूक या कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि ये खुदावन का फरिश्ता है। गौर करें, इसके तीन गवाह यहाँ बैठे हुए हैं। एक हफ्ता या फिर एक हफ्ते से कुछ ज्यादा दिन पहले का वाकया है, मैं पहाड़ों पर तकरीबन मेक्सिको के करीब दो भाइयों के साथ जो यहाँ बैठे हुए हैं गया था। उस वक्त मैं अपनी पतलून की टांग से एक कांटा निकाल रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ जो कि तकरीबन इस तरह था, जिसने पहाड़ों को हिला दिया। अब ये बिल्कुल सच है। मैंने भाइयों को कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कुछ मुख्तलिफ समझा, और खुदावन ने मुझसे कहा, अब तैयार हो जा और मशरिक को जा। ये उस रोया की ताबीर थी, समझे? अब आपके इल्म के लिए कि भाई सोतमैन जिस शिकार के लिए गया था अभी उसे हासिल नहीं कर पाया था। हम उसे उस भाई के लिए हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और खुदावन ने कहा, अब देख, तेरे लिए ये निशान होगा कि आज रात वो तुझे हासिल नहीं कर पाएंगे। आज तुझे खुद उन फरिश्तों की मुलाकात के लिए वक्फ करना चाहिए। और मैंने उसे अपने सामने खड़े महसूस किया। आपको भी याद होगा, मैं मगरिब में था और फरिश्ते मशरिक की तरफ से आ रहे थे। जब वो मेरे करीब पहुंचे, तो मैं भी उनके साथ ऊपर उठा लिया गया। क्या आपको याद है? मशरिक से आते हुए ऐसा हुआ। भाई फ्रेड और भाई नॉर्मन आज रात यहाँ मौजूद है जो इस बात के गवाह हैं। और जैसे ही हम नीचे जा रहे थे, तो मैंने उस भाई पर जोर दिया कि वो ठहर कर उस शिकार को हासिल करे। भाई सोतमैन, क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, उस वक्त ये ठीक वहाँ मौजूद थे। मैंने मजबूर किया, लेकिन तो भी खुदावन ने कहा वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा। फिर मैंने कुछ न कहा और चलता रहा। उस दिन साहिबान के साथ कोई चीज बैठी हुई थी। भाई सोतमैन, आपको याद होगा कि जो ही कुछ बातें जाहिर की गई थी, मैंने आपको और भाई नॉर्मन को बताई थी। भाई नॉर्मन कहाँ है? वहाँ पीछे है। मैंने उन्हें कसम दिलाई थी कि वो इन बातों को किसी से भी न करे। क्या ये सच है? क्या मैं इस तरह रुख बदल कर उस खेमे से दूर चला गया था? क्या ये सच है? क्योंकि ये वही बात थी जो बताई गई थी, जो पहले बताई जा चुकी थी, और मैं जानता था कि जब तक ये वजूद में ना आ जाए, मैं लोगों को नहीं बता सकता, ताकि ये लोगों की समझ में आ जाए। क्या आपने उस पर गौर किया था, यानी उस एक फरिश्ते पर जिसके मुतालिक मैंने कहा था? क्योंकि वो किस कदर अजीब फरिश्ता था, वो मुझे उन बाकियों में से सबसे अहम दिखाई दे रहा था। क्या आपको याद है? वो एक जुर्मट की सूरत में थे, तीन एक तरफ और एक ऊपर की जानिब था, और ठीक मुझसे आगे अगर बाएं से दाएं गिनती की जाए तो वो सातवां फरिश्ता बनता था। वो ज्यादा रोशन था और बाकी सबसे ज्यादा काबिल तवज्जो था। क्या आपको याद है कि मैंने बताया था कि वो इस तरह सीना ताने मशरिक की तरफ उड़ रहा था? क्या आपको याद है? बिल्कुल इस तरह था। और मैंने कहा था, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे ऊपर उठा लिया। क्या आपको ये बात याद है? वो यहाँ है, और ये सातवीं मोहरी है जिस पर मैं अपनी तमाम उम्र हैरत ज़दा रहा हूँ। आमीन। बेशक बाकी मोहरे मेरे लिए बहुत अजीम मतलब रखती हैं, लेकिन ओ, आप नहीं जानते कि मेरी जिंदगी में एक मर्तबा भी इस सातवीं मोहर का क्या मतलब है। मैंने दुआ की और मैं खुदा के सामने रोया, चिल्लाया, मैं ये बात तकरीबन फिनिक्स की इबादत के बाद की है, और जो लोग मेरे साथ थे वो इस बात से वाकिफ हैं। और मैं पहाड़ों में पड़ा रहा। एक सुबह मैं उठा और आबी दरा साबिनो चला गया। ये बहुत ऊंचा, ना हमवार और पहाड़ी सिलसिला है, और मैं वहाँ ऊपर चला गया, और वहाँ पर पैदल चढ़ने का रास्ता था जो लेमन माउंटेन तक जाता था, जो 30 मील का सफर बनता है, और उस पर तकरीबन 30 फीट बर्फ की तह जमी हुई थी। बस उस पहाड़ पर जाने के लिए मैंने सुबह सवेरे दिन निकलने से पहले उस तंग रास्ते पर चिकनी चट्टानों के पास से गुजरना था कि मैंने एक तरफ जाने की रहनुमाई महसूस की और मैं मुड़ा और फिर बहुत ऊंची नकीली चट्टानों के पास पहुंच गया। वो मेरे खुदाया, और वो सैकड़ों फीट बुलंदी थी और मैं उन चट्टानों के दरमियान घुटनों के बल हो गया और मैंने बाइबल को एक तरफ रख दिया, इस किताब को एक तरफ रख दिया और इस छोटी तख्ती को भी एक तरफ रख दिया और मैंने कहा, खुदावंद खुदा, इस सोया का क्या मतलब है? मैंने कहा, खुदावंद, क्या इसका मतलब मेरी मौत है? आपको याद है कि मैंने बताया था कि इसका मतलब मेरी मौत हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि मैंने खुद को टुकड़ों में बढ़ते देखा। आपको याद है, कितने लोग इसके मुतालिक जानते हैं जिन्होंने इसकी आवाज़ को सुना था? बस यकीनन देखें कि आप सब इससे वाकिफ है, और मेरा ख्याल था इसका मतलब मेरी मौत हो सकता है। और फिर कमरे में मैंने कहा, खुदावंद, ये सब क्या क्या था और इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि मैं मरने वाला हूँ? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगा। देख, अगर मेरा काम खत्म हो गया है तो मुझे रुख्सत कर दे, मैंने ऐसा ही कहा। अब देखिए ये क्या था, और खुदावन ने एक गवाही को वापस भेजा और बताया इसका मतलब ये नहीं है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, बल्कि ये मेरे काम में मजीद अजाफा था। ओ ओ ओ, क्या आप समझ गए? समझे? और वहाँ दरा साबीनों में बैठा हुआ था और आसमानी बाप इस बात को जानता है, बिल्कुल जैसे सच्चाई के साथ आपने इसे पूरा होते हुए देखा है। वो फरिश्ते ऐन नीचे उतरे और हर पैगाम को यकसा तौर पर जाहिर किया। फिर आप जानते हैं कि ये खुदा की तरफ से है या कि नहीं, ये पहले ही एक रोया के जरिए बताया गया, और मैं इबादत के खत्म होने तक आपको नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे इससे मना किया गया था। उस सुबह दरा साबीनों में मैं अपने हाथों को उठाए खड़ा था और वहाँ हवा ने मेरे पुराने स्याह हैट को नीचे गिरा दिया। तब मैं वहाँ अपने हाथों को उठाए हुए दुआ कर रहा था। मैंने कहा, खुदावंद खुदा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि खुदावंद, मैं इसे नहीं समझ सका और मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरे अब्दी घर को जाने का वक्त आ गया है तो मुझे इसी जगह से उठा ले ताकि वो मुझे कभी तलाश ना कर सके। अगर मेरा वक्त आ गया है तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर मातम करे। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले यही समझें कि मैं सैर को निकला हूँ और वो मुझे तलाश ना कर पाए, मुझे कहीं छुपा दे। अगर मेरे रुख्सत होने का वक्त आ गया है तो फिर मुझे रुख्सत होने दे। शायद किसी दिन जोसेफ यहाँ मेरी पड़ी हुई बाइबल को देख ले तो उसे इस्तेमाल करने देना। खुदावंद देख, अगर मेरे रुख्सत होने का वक्त आ गया है तो मुझे रुख्सत होने दे। और मैं अपने हाथों को फैलाए हुए था और अचानक ही कोई चीज मेरे हाथ से टकराई। मैं नहीं जानता और न मैं बता सकता हूँ। क्या मैं सो गया था? मैं नहीं जानता। क्या मैं बेखुद हो गया था? मैं नहीं जानता। क्या ये रोया थी? मैं आपको इसकी कैफियत नहीं बता सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, ये उन फरिश्तों जैसी ही कोई चीज थी। वो मेरे हाथ से टकराई और मैंने देखा तो वो एक तलवार थी जिसका दस्ता मोतियों का और बहुत ही खूबसूरत था और उस पर सुनहरी हिफाजती खोल था और उसका ब्लेड इस तरह नजर आता था जैसे कि क्रोम होता है, जो चांदी की तरह शफाफ और नहायती चमकदार था। ओ मेरे खुदाया, और वो इंतहाई तेज धार थी। और मैंने सोचा, क्या ये खूबसूरत तरीन चीज नहीं है? वो मेरे हाथ में काबू थी और मैंने सोचा ये इंतहाई खूबसूरत है। लेकिन फिर मैंने कहा, अरे मैं तो एक तलवार जैसी चीज से हमेशा खौफज़दा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि मैं भला इसका क्या करूँगा। और उसी वक्त एक जोरदार आवाज चट्टानों से टकराती हुई नीचे आई और कहा, ये बादशाह की तलवार है। और फिर मैं इस कैफियत से बाहर निकला। बादशाह की तलवार, अब देखें, अगर वो कहता ये तलवार एक बादशाह की है, लेकिन उसने कहा बादशाह की तलवार, और वो तो सिर्फ एक ही है, बादशाह, और वो खुदा है, और उसकी एक ही तलवार है, और वो उसका कलाम है जिससे मैं जिंदा हूँ, और खुदा मेरी मदद करे, और वो अपनी पाक मेज पर अपने पाक कलाम के साथ खड़ा है, ये उसका कलाम है, आमीन। ओ, हम कैसे दिन में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसी अजीम बात है। क्या आप इस राज और इस भेद को समझ गए हैं? ये तीसरी, वहाँ खड़े हुए जब ये मुझसे दूर हो गई और कोई चीज मेरी तरफ आई और कहा, खौफ ना कर। अब मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, बल्कि ऐसे जैसे कि कोई मेरे अंदर से बोला था। मैं आपको बिल्कुल उसी तरह सच्चाई बता रहा हूँ जिस तरह ये वाकया हुई। कोई चीज टकराई और कहा, खौफ ना खा। यही वो तीसरे खिंचाव की खिदमत है। तीसरे खिंचाव की खिदमत, क्या आपको याद है? उसने कहा, जो कुछ तू वजाहत करने की कोशिश कर रहा था उसके बहुत सारे नकाल पैदा हो गए हैं, लेकिन कहा, मगर इसकी कोई वजाहत करने की कोशिश नहीं कर सकता। क्या आपको याद है? कितने लोगों को वो रोया याद है? इसलिए ये हो चुकी है और ये टेप पर रिकॉर्ड होकर हर जगह पहुंच चुकी है। ये तकरीबन आज से 6 या फिर 7 साल पहले की बात है, बल्कि 7 साल बीत चुके हैं। उसने कहा, इसकी कोई वजाहत करने की कोशिश ना कर, और कहा ये तीसरा खिंचाव है, लेकिन मैं इसमें तेरे साथ मुलाकात किया करूँगा। क्या ये सच है? उसने कहा, इसकी कोई वजाहत ना करना। मैं एक बच्चे का जूता पकड़े खड़ा था जब खुदावन ने मुझे बताया। उसने कहा, अब तू अपने पहली बार खींचने को देख, और जब तू ऐसा करेगा तो मछली कांटे के पीछे दौड़ेगी। और कहा, फिर तू अपने दूसरी बार खींचने को देख, और कहा, क्योंकि तब महज छोटी सी मछली होगी। फिर उसने कहा, और जब तू तीसरी मर्तबा खींचेगा तो ये आएगी। और तमाम खादम मेरे चौगिर्द जमा थे और कह रहे थे, भाई ब्रहनम, हम जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया, भाई ब्रहनम। और इसी जगह मैं हमेशा खादमों के दरमियान उलझ जाता हूँ, समझे? मैं लोगों से प्यार करता हूँ, मगर लोग हर एक चीज की, यानी इस उसकी वजाहत जानना चाहते हैं। और मैंने कहा, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, मैंने मछली पकड़ने का तरीका समझ लिया है। अब देखें, अब पहला काम जो आप करेंगे उसका तरीका ये है, जब आप इर्द गिर्द मछलियाँ ही मछलियाँ देखें तो कांटे को झटका मार दें, ठीक है, क्योंकि यही मछली पकड़ने का एन तरीका है। चुनाचे मैंने कहा, कांटे को झटका देना। अब आप समझते हैं कि जब मैंने कांटे को पहला झटका दिया तो उसके पीछे मछलियाँ आई, लेकिन वो छोटी छोटी थी और दूसरे भी बिल्कुल इसी तरह पकड़ रहे थे। फिर मैंने कहा, अब आप फेंके, और मैंने उसे झटके से किनारे पर खींचा और एक मछली आ गई, लेकिन ये कांटे के ऊपर चमड़े की मानी दिखाई देती थी क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी थी। और जब मैं वहाँ खड़ा था तो किसी चीज ने मुझसे कहा, मैंने तुझे इस तरह करने से मना किया था, और मैंने रोना शुरू कर दिया, और इस तरह सारी डोर मेरे गिर्द लिपट गई, और मैं वहाँ सर झुकाए हुए खड़ा था और रो रहा था। और मैंने कहा, ए खुदा, हो मुझे माफ कर दे, मैं एक अहमक शख्स हूँ, खुदावन ऐसा ना कर, मुझे माफ कर दे। और मेरे पास ये डोरी थी, और उस वक्त जो कुछ मेरे हाथ में था वो छोटा सा एक बच्चे का जूता था, और मेरे पास वो डोरी थी जो मेरी उंगली जितनी मोटी थी, जो कि तकरीबन 1/2 इंच मोटी थी, और जूते के तस्मे वाला छेद तकरीबन कोई 1 इंच के 16वें हिस्से के बराबर होगा। और मैं इस 1/2 इंच मोटी डोरी का तस्मा उस जूते के छेद में डालने की कोशिश कर रहा था, जी हाँ। और एक आवाज आई और कहा, तू 35 कोस्टल बच्चों को माफूकल फितरत बातें नहीं सिखा सकता, और कहा, अब देख, उन्हें अकेला छोड़ दे। और फिर उसने मुझे ऊपर उठा लिया, और मुझे उठाकर उसने बुलंदी पर एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां कोई इबादत हो रही थी। ये कोई साहिबान या बड़े गिरजे की किस्म का दिखाई दे रहा था। और मैंने देखा तो वहां इस तरह एक तरफ एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था, और मैंने देखा कि वो रोशनी मेरे ऊपर से किसी से मुखातिब है। ये वही रोशनी थी जो आप तस्वीर में देखते हैं। वो इस तरह घूमती हुई मेरे पास से उस साहिबान के पास चली गई और कहा, मैं तुझसे वहाँ मिलूंगा। और उसने कहा, ये तीसरा खिंचाव है, और ये तू किसी को ना बताना। और दरअसल बीनों में उसने कहा, ये तीसरा खिंचाव है, और इसके साथ 3 बड़े काम मुंसलिक हैं, जिनमें से एक आज बल्कि कल जाहिर हुआ, और एक आज जाहिर हुआ, और तीसरी चीज ऐसी है जिसका मैं तर्जमा नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी नामालूम जुबान में थी, लेकिन मैं वहाँ ठीक खड़ा था और सीधा उसकी तरफ देख रहा था, और ये तीसरे खिंचाव की खिदमत जाहिर हो रही थी। और खुदा का रूह कुदूस, ओ मेरे खुदा, यही इस वक्त था, पूरा आसमान खामोश हो गया था। अब देखे, मेरा यहाँ रुक जाना ज्यादा बेहतर है। मैं रिकावट महसूस कर रहा हूँ कि इसके बारे में मजीद कुछ ना बोलूं, समझे? बस इतना याद रखें कि ये 7वीं मोहर की कोई वजह थी कि इसे खोला नहीं गया। देखें, ये इस सबब से खोली नहीं गई ताकि कोई भी इसके बारे में कुछ भी जान ना सके, समझे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके मुतालिक जब मैं एक लफ्ज भी नहीं जानता था तो ये रोया बरसों पहले मुझे दिखाई दी थी, क्या आपको ये याद है? और ये यहाँ बिल्कुल उस दूसरी की तरह एन कलाम के अंदर दाखिल होती है। खुदा मेरे दिल को जानता है, मैंने इस किस्म की चीज के मुतालिक कभी ख्याल भी नहीं किया था, और ये यहाँ मौजूद था, ये हमारी सोच से आगे है, जी हाँ, वो मेरे खुदाया, ये साबित करता है कि ये खुदा है। देखें, क्योंकि ये खुदा के वादों पर पैगाम के सिरे से लेकर पूरा उतरता है। अब तवज्जो दें, अब गौर करें, क्योंकि वक्त के इख्तिताम का पैगाम ये मोहर है, क्योंकि खुदा ने बाकी 6 मोहरें जाहिर कर दी हैं, लेकिन उसने 7वीं के मुतालिक कुछ भी नहीं कहा। जब ये वक्त के खात्मे की मोहर शुरू होगी तो बाइबल के मुताबिक ये मुतलिक तौर पर एक भेद होगा।
Before knowing that, and remember, Revelations 10:1-7,
इसे जानने से पहले ऐसा होगा, इसलिए मुक्काश्वा 10:1-7 को याद रखें। 1:7 बाप 10:1-7 के मुताबिक सातवें फरिश्ते के पैगाम के इख्तिताम पर खुदा के तमाम भेद खोल दिए जाएंगे। हम आखिरी वक्त में हैं। सातवीं मोहर का खुलना करीब है। अब देखें, मैंने ये कैसे जाना? एक दिन, बल्कि आज से एक हफ्ता पीछे गुज़िश्ता इतवार को मुझे इल्म हुआ, जब मैं हलीम बनो पर मुनादी कर रहा था। याद रखें, खुदा अदना चीजों में काम करता है। मैं महसूस ना कर सका दर हकीकत ये किसके बारे में बयान कर रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। ये बहुत ही हलीम तरीका है। आपका ख्याल होगा ये कोई ऐसी चीज होगी जो वेटिकन पर जाहिर होगी, या लेकिन ये तो योहन्ना अस्तबागी की तरह आया। ये हमारे खुदावन की चरनी में पदेश की तरह आया। खुदा को जलाल मिले और खुदा मेरी मदद करे, क्योंकि घड़ी सर पर है। आमीन। हम इस मकाम पर हैं, ओ मेरे खुदा। क्या अब आप समझ गए हैं कि ये खुदा की रोया की सच्चाई है कि सात फरिश्ते मुझे मगरिब से ला रहे थे, वो मगरिब से मशरिक की तरफ वापस आ रहे थे, वो आज रात के पैगाम के लिए मुझे ला रहे थे, ओ मेरे खुदाया। अब देखें उस गर्ज की आवाज और उस मकसद को जिसके तहत यहाँ लाया गया, जिसे उसने जाहिर कर दिया और उसे साबित कर दिया कि ये खुदा की तरफ से है। अब जरा इस पर गौर करें, मैं इन मोहरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ये इसी हफ्ते के दौरान जाहिर हुई है। क्या किसी ने उन सात फरिश्तों के बारे में कभी ऐसा सोचा था, या आने वाले पैगाम का किसी ने ऐसा सोचा था जिसके लिए वो फरिश्ते मुझे उठाकर यहाँ ला रहे थे? समझे, याद रखें, सातवां पैगंबर बल्कि सातवां फरिश्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिले तवज्जो था। अब देखें, वो इस तरह खड़े थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, मैं यहाँ खड़ा था और मैं बाकियों को देख रहा था। गौर करें, पहले छोटे परिंदों का एक गोल आया जो अपने पर मार रहे थे, क्या आपको वो याद है? वो सब मशरिक की तरफ उड़ गए। और दूसरे गोल में रोशन और ज्यादा बड़े परिंदे थे जिनके पर कबूतरों की मानिंद दिखाई देते थे, और वो भी मशरिक की तरफ उड़ गए। ये पहले और दूसरे खिंचाव की खिदमत थी, और फिर इनके बाद फरिश्ते आए। और जबकि मैं उसी जगह खड़ा था जब ये जोरदार धमाका हुआ, और मैं उस वक्त इस तरह से मशरिक की तरफ देख रहा था, और वहाँ फरिश्ते आए और मुझे ऊपर उठा लिया, और मैं बिल्कुल अपने हवास से बेगाना हो गया था। और उनमें से आते हुए एक मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, और वो एक, जब मैं उस जुर्मट में दाखिल हुआ तो वो मेरे बाएं हाथ था, लेकिन अगर बाएं से दाएं तरफ उनका शुमार किया जाए तो देखें, उस तरफ से आते हुए वो फरिश्ता सातवें नंबर पर था। अब देखें, सात पैगंबरों को याद रखें। क्या आपको जूनियर जैक्सन का सफेद पत्थर के मखरूत वाला ख्वाब याद है, जिसकी ताबीर मैंने आपको बताई थी? समझे, अब जरा उस रात पर गौर करें। और मुझे बल्कि उस रात 6 ख्वाब आए, और उनमें से हर एक एक ही चीज की तरफ इशारा करता था। फिर रोया शुरू हो गई और मुझे मगरिब में भेज दिया गया। अब जूनियर मौजूद है, वो देख रहा था। गौर करें, देखें ये कैसी कामिल सूरत है। अब मुझे तवक्को और भरोसा है कि आप लोग महसूस करते होंगे कि मैं ये जलाल और इज्जत यीशु मसीह को देता हूँ जो इस सारे कलाम का मुसन्निफ है, और आपने अपनी जिंदगी भर पहले कभी मुझे इस तरह बोलते हुए नहीं सुना होगा, मगर ये घड़ी करीब आ रही है। समझे, बस तवज्जो दें। अब मैं इसे आपके लिए यकीनी बनाना चाहता हूँ ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। मैं आपसे फिर जुदा होने का इरादा कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे दूसरी जगहों पर भी मुनादी करनी जरूरी है। लेकिन अब देखें कि अगर आप कहें कि मैंने ये सब अफसानवी किस्म की बातें सुनाई हैं, तो मैं नहीं जानता कि फिर मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं किसी दूसरे शख्स की अदालत नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी जात के लिए खुदा को जवाब दे हूँ। लेकिन क्या इन बरसों में खुदावंत के नाम से कभी मैंने आपको कोई ऐसी बात बताई है जो दुरुस्त साबित ना हुई हो? इसलिए कोई भी शख्स इस तरह नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने हमेशा वही कहा है जो खुदावन ने मुझे बताया है। अब मुझे साबित करने दे और आपको दिखाने दे कि ये एन सच्चाई है। अब याद रखें, अगर तुम में कोई रूहानी शख्स या नबी हो तो मैं खुदा में रोया में या ख्वाब में उससे कलाम करूंगा, यानी वो ख्वाबों का मतलब बयान करेगा। यूसुफ को देखें, जो ख्वाबों का मतलब बता सकता था और रोहाएं देखता और उन्हें बयान कर सकता था, क्या ये बात सच है? अब इस बात पर तवज्जो दे कि जब जूनियर को ये ख्वाब आया तो वो खुद एक मैदान में खड़ा हुआ देख रहा था, जहाँ पर एक बड़ा मखलूत नजर आ रहा था जो कि इस तरह था। उन पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ था और मैंने उसका मतलब लोगों को बताया था। जूनियर, क्या ये बात दुरुस्त है? और ये वाकया तकरीबन एक साल पहले का है। अब इससे अगली बात पर गौर करें। मैंने किसी किस्म की सुलाख लेकर उसे काट डाला और अंदर एक सफेद पत्थर था जिस पर कुछ नहीं लिखा था। और उस वक्त मैंने मगरिब का सफर इख्तियार किया और मैंने उन सब लोगों को बताया और कहा, मगरिब की जानिब मत जाओ, यहाँ ठहरे रहो और मेरी वापसी का इंतजार करो। मैं इस धमाके के लिए मगरिब की तरफ गया और मशरिक की तरफ से इस तरह आया कि रूल कुदुस ने उस गैर तहरीर शुदा कलाम का मतलब जाहिर किया। अब अगर ये मुकम्मल तौर पर कादरे मुतलिक खुदा का काम नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप मालूम करें कि ये क्या है। दोस्तों, मैं ये किस लिए बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको ये दिखाने के लिए कि हम आखिरी वक्त में हैं। अब देखें, बाकी सब चीजें हर्फ ब हर्फ कलाम के मुताबिक थी तो ये भी मुकम्मल तौर पर हर्फ ब हर्फ कलाम के साथ है। हम यहाँ पर हैं। दोस्तों, हम आखिरी वक्त में हैं। बहुत जल्द वक्त खत्म हो जाएगा। लाखों लोग अपनी जिंदगियां खो बैठेंगे। लाखों लोग जो अब खुद को निजात याफ्ता तसव्वुर करते हैं, एटमी दौर के ईंधन में शुमार किए जाएंगे। हम आखिरी घड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कादरे मुतलिक खुदा के फजल और उसकी मदद से उसके लोग मसीह की आमद को जल्द होता हुआ देखेंगे। भाई ब्रहनम, ये कितना लंबा अरसा हो सकता है? शायद 20 साल, शायद 50 साल हो, या शायद 100 साल भी लग सकते हैं, ये मैं नहीं जानता। शायद कल सुबह आ जाए, शायद आज ही रात आ जाए, मैं ये नहीं जानता। और अगर कुछ लोग कहें कि वो जानते हैं तो वो झूठे हैं, समझे? वो इसके मुतल्लिक नहीं जानते, सिर्फ खुदा ही इसके मुतल्लिक जानता है। अब गौर करें, खुदा की मदद से ये सब बातें रूहानी तौर पर मुझ पर जाहिर की गई हैं, और मैं आपसे सच्चाई के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझ पर रूह कुदुस ने जाहिर की है, और इनमें से हर एक बात ने बाइबल में अपना मकाम पाया है। अब देखें, मैं नहीं जानता कि वो कैसा बड़ा भेद है जो इस मोहर के नीचे पोशीदा है। मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे सामने नहीं ला सकता, मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है और इस पर क्या क्या कहा गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ये गर्ज की 7 आवाजें थी जो यके बाद दीगरे मुसलसल 7 मुख्तलिफ औकात के लिए पैदा हुई, और इससे एक और चीज से पर्दा उठा है जिसे मैंने देखा है। और फिर जब मैंने देखा तो इसकी ताबीर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ गए और इसे बाहर ना ला सका। ये बिल्कुल सच है, समझे? अभी वो वक्त आया नहीं, लेकिन देखें, ये उस दायरे में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो घड़ी करीब आती जा रही है। बस आपके करने के लिए एक ही काम है और वो ये है कि मैं खुदावंत के नाम से आपसे कहता हूँ कि तैयार हो जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सी घड़ी कुछ हो जाए। अब जब कोई बात टेप पर आ जाती है, जो कि आ गई है, तो इससे मेरे 10,000 दोस्त मुझसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो कहने की कोशिश करते हैं कि भाई ब्रहनम खुद को खुदा के सामने एक खादम या नबी या फिर कुछ और बनाने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलत फहमी है। मैं सिर्फ आपको वही कुछ बता रहा हूँ जो मैंने देखा और जो मुझे बताया गया है। फिर भी आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं नहीं जानता क्या होगा या क्या कुछ वकू में आएगा, मैं ये नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि उन 7 गर्जों के अंदर वो बेद पोशीदा है जिन पर आसमान भी खामोश हो गया है। क्या सब लोग समझ गए हैं? ये वही वक्त और वही घड़ी हो सकती है जिसमें हम उस शख्स के मंजर पर आने की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है शायद वो शख्स मंजर पर आ चुका हो, शायद जिस खिदमत के वसीले मैंने लोगों को कलाम की तरफ वापस लाने की कोशिश की है, इसी ने बुनियाद डाली हो। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको भलाई की खातर छोड़ रहा हूँ। एक ही वक्त में हम 2 शख्स बरपा नहीं हो सकते, समझे? अगर ऐसा ही है तो वो बड़े और मैं घटूं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये इजाज खुदा से मुझे मिला है कि मैंने उसे देखा और समझा कि वो क्या था, और इतना कुछ पर्दे से बाहर आते हुए देखा, समझे? अब ये ऐन सच्चाई है और मुझे यकीन है कि आपने इस हफ्ते वाकई होने वाले कामों को मुलाहजा किया होगा, और मुझे यकीन है कि आपने कोलन के घराने के उस छोटे लड़के पर गौर किया होगा जो एक रात वहाँ पड़ा हुआ था और मरने के करीब था, और उस छोटी लड़की पर भी गौर किया होगा जो लकीमिया का शिकार थी। खुदा की बादशाही आ रही है और ये पहले के निस्बत अब ज्यादा मनफी से मुस्बत होती जा रही है। अब इससे लोगों का गला घुटना नहीं चाहिए। पहले रास्तबाजी और फिर तकदीस और फिर पाखरू के बपतिस्मे के बाद हम इस मकाम तक पहुंच चुके हैं, समझे? हम हर वक्त खुदा के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। ऐ मेथोडिस्ट खादमे, क्या आप देख नहीं सकते कि आपका तकदीस का पैगाम उससे कितना बुलंद था जिसकी लूथर ने मुनादी की थी? ऐ पेंटिकोस्टो, क्या आप देख नहीं सकते कि आपका बपतिस्मे का पैगाम उससे कितना बुलंद था जिसकी मेथोडिस्टो ने मुनादी की थी? क्या आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? ओ, हमने बेशुमार आगे की चीजें हासिल कर ली हैं और ये सच है, लेकिन अगर कोई इसकी नाजायज तहकीर करता है, जैसा कि लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, तो ये दरअसल ये सच्चाई नहीं बल्कि ये झूठ है, तो मैं इससे नफरत करता हूँ। लेकिन मैं ठोस सच्चाई को पसंद करता हूँ। हमें इसकी परवाह नहीं कि इसके रास्ते में कैसी कैसी रुकावटें आती हैं। अगर ये सच्चाई है तो बिलाकर खुदा इस सच्चाई को जाहिर करेगा, और अगर वो जल्द ही इन दिनों में किसी दिन ऐसा ना करे तो फिर मेरी रोया गलत थी। आप समझ सकते हैं कि मैं खुद को किस मकाम पर रखता हूँ। अगर कोई कहे भाई ब्रहनम ये कब होगा, मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम जमीन पर दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलते तो इन्हीं दिनों में से किसी रोज हम मसीह के तख्ते अदालत पर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, और आपको मालूम हो जाएगा कि उस कमरे में बाकी तमाम मोहरों का मुकाशवा खुदा की तरफ से हासिल होता रहा था, और इनमें से इस मोहर का एक भेद इसलिए जाहिर नहीं किया गया कि सात गर्ज की आवाजें मुसलसल सुनाई दी, और ये मुकम्मल हालत में इन्हीं के अंदर है, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, हत्ता कि इसे तहरीर भी नहीं किया गया। चुनाचे हम आखिरी वक्त में हैं, हम इसी मुकाम पर हैं। मैं खुदा के कलाम के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर वो उसे हमारे गुनाहों के कफारे के लिए ना भेजता तो हम बगैर किसी उम्मीद के गुनाहों की दलदल में फंसे होते, लेकिन उसके फजल से उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, बिल्कुल जैसे आप रंग कार्ड की पानी की बाल्टी में एक कतरा इंक का फेंक दें तो फिर आप दोबारा कभी उस इंक को ना देख सकेंगे। इसी तरह जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो उन्हें यीशु मसीह के खून में डाल देते हैं, और वो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। खुदा उन्हें यूं भूल जाता है जैसे वो कभी थे ही नहीं, और जब तक वो कुर्बानी हमारे कफारे के लिए वहाँ रखी हुई है तब तक ऐसा ही है। देखें, ऐसा ही है। अब हम गुनाहगार नहीं हैं, बल्कि खुदा के फजल से हम मसीही हैं। याद रखें, शायद अपनी जात में हम बहुत बुरे थे, मगर देखें कि खुदा का फजल हम पर जाहिर हुआ और उसने हमें वो बना दिया जो हम आज के दिन हैं, यानी मसीही भाई और बहनें। ये हफ्ता मेरे लिए बहुत ही मसरूफ रहा है, मैं थक गया हूँ, मेरा जहन भी थक गया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इस काम को बेहतरीन सरंजाम देने की कोशिश की है जो कि मैं कर सकता था, और हर रोज कोई अजीब बात सामने आती रही। मैं खुशी खुशी कमरे में दाखिल होता था और चंद मिनट वहाँ ठहरता और कोई ऐसी चीज देखता जो पूरी तरह मुझे चकरा के रख देती थी, और मैं हैरान हो जाता था, और मैं यहाँ से वहाँ जाता और अपने मसौदा तैयार करता था। मैं डॉक्टर स्मिथ, उरिया स्मिथ की कुतब उठाता और इसके अलावा दीगर तमाम मसनफिन की किताबें लेता था, और उनकी किताबों में जो लिखा होता था उनका मुतालिया करता था। मैं कहता था, अब ये छठी मोहर है, ये चौथी मोहर है, अब ये आदमी इसके मुतालिक क्या कहता है और वो क्या कहता है, ठीक है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, या यूं ऐसे है। फिर मैं किसी दूसरे आदमी की किताब की तरफ रुख करता और वो भी कहता कि ये ऐसे है और वैसे है, और मुझे यूं लगता जैसे मैंने कोई दुरुस्त चीज हासिल नहीं की, समझे? और फिर मैं सोचता, अच्छा खुदावंद बता ये क्या है, और मैं कुछ देर फर्श पर इधर उधर फिरता रहता, मैं झुकता और दुआ करता, फिर वापस जाता और बाइबल को उठाता, नीचे बैठ जाता और पढ़ने लग जाता, और फिर आगे पीछे फिरने लग जाता था। फिर अचानक जब मैं पुरसुकून हो जाता था तो ये जाहिर हो जाती थी, तब मैं फौरन कलम पकड़ता और जो कुछ मैं देख रहा और कर रहा होता था और उसे लिखने लग जाता था, और इस तरह जो कुछ मुझे नजर आ रहा होता था उसे मैं कलम बंद कर लेता था। फिर दिन का बाकी हिस्सा मैं तलाश करने और देखने में गुजार देता था, और मालूम करता था कि ये सब कुछ कलाम के मुताबिक है या कि नहीं। इसलिए कि कलाम कहता है सब चीजों को साबित करो, समझे। मैं इसे तलाश करता और सोचता। अब बहुत से लोग रोयाएं देखते हैं, बहुतों को मुकाशवात मिलते हैं, लेकिन अगर कोई चीज कलाम के बरक्स हो तो फिर उसे तर्क कर देना चाहिए। ये दुरुस्त है, उसे तर्क कर देना चाहिए। अब देखें, फिर मैं इस तरह किसी बात को लेकर आगे बढ़ता, किसी नुक्ते को लेकर आगे बढ़ता और छोटी छोटी बातों पर निशान लगाता जाता। मैं सोचता था, अच्छा अब जमायत ये सुनकर बहुत खुश होगी क्योंकि इसका ताल्लुक यहाँ और वहाँ मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या कहता है। जी हाँ, और हाँ, ये तो इस मकाम पर और उस मकाम पर भी ठीक है, समझे। और फिर मैं उसे बाइबल में से तलाश करता और पूरे हफ्ते में इसी तरह मैंने सब कुछ तैयार किया और अब ये टेपों पर मौजूद है। आपको इनकी तरफ खुशामदीद कहा जाता है और मैंने मसीही रफाकत और खुदा के फजल से यीशु मसीह की खातिर तमाम आदमियों के लिए अपने इल्म के मुताबिक सर तोड़ कोशिश की है। मैंने अपने इल्म के लिहाज से पूरी मेहनत की है। अब बेहतरीन जमायतों में से एक साबित हुए हैं। इससे ज्यादा बेहतर लोग कभी किसी को नहीं मिले हैं। आप लोग दिन के 1 बजे यहाँ आ जाते और 5 बजे तक खड़े रहते, जब तक के चर्च के दरवाजे खोल ना दिए जाते और लोगों को अंदर आने की इजाज़त ना मिलती थी। आप सर्दी में खड़े रहे, आप बर्फबारी में खड़े रहे, आपने हर तकलीफ बर्दाश्त की, दीवारों के साथ खड़े रहे, हत्ता के आपकी टांगे थक जाती। मैंने बैठे हुए मर्दों को उठते और औरतों को जगह देते देखा है और कई लोग खुद उठ खड़े हो जाते थे और किसी दूसरे को जगह दे देते थे। मैं सोचता हूँ, खुदावंद ये सब क्या है। ये हफ्ता बड़ा ही पुरअसरार गुजरा है, सारा काम ही अजीब होता रहा है। लोग किस तरह आते रहे हैं, लोगों को सुनने के लिए इमारत से बाहर खिड़कियों में, दरवाजों में, पीछे की चारों तरफ, गर्ज हर जगह खड़े मैंने देखा है। और जहाँ तक मुनाद होने का ताल्लुक है तो मैं हरगिज कोई मुनाद नहीं हूँ। मैं अपनी अकल से जानता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूँ, मैं कोई मुनाद नहीं हूँ, लेकिन लोग क्यों इस तरह इकट्ठे होकर मेरी सुनते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं? वो मेरे जैसे किसी आदमी को सुनने नहीं आते, बल्कि इसलिए आते हैं कि इसमें कोई चीज ऐसी है जो लोगों को खींच कर लाती है, समझे। इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद है जो लोगों को खींच कर लाती है। जब मैंने शुरू किया तो मेरी बीवी प्लेटफॉर्म पर खड़ी ये गीत गा रही थी, मशरिक और मगरिब से वो आएंगे, दूर के ममालिक से वो आएंगे, बादशाह की जियाफत में होंगे शरीक, बन के मेहमान आएंगे वो, मुबारक है ये जारीन, किस कदर रुखे पाक पर वो करेंगे नजर, नूरे इलाही से चमकेंगे वो, बन के उसके फजल के मुबारक हिस्सेदार, चमकेंगे जवाहर की मानिद उसके ताज में। शायद आपके जेन में हमेशा से ये ख्वाहिश हो कि आप यीशु मसीह के ताज के जवाहिर बन सके। पौलुस ने कलीसिया से कहा, तुम उसके ताज के मोती और जेवर हो। हम भी यीशु मसीह के ताज के जवाहिर बनना चाहते हैं। हम कभी किसी आदमी को ये इज्जत देना नहीं चाहते, इसलिए आप मेरे मुतल्लिक सब कुछ भूल जाएं। मैं भी आपका भाई हूँ, एक गुनाहगार जिसे फजल से निजात मिली है, जो जिंदा रहने के भी लायक नहीं था, और यही बिल्कुल सच्चाई है। और मैं ये महज इनकसारी के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये हकीकत है। मेरे अंदर कुछ नहीं है और किसी भी तरह कोई खूबी नहीं है, लेकिन खुदा के फजल ने मेरी कमजोर और बुझती हुई आंखों को वक्त के पर्दे के पार देखने के काबिल बना दिया, ताकि वहाँ उन चीजों को देख सकूँ। और मैं वापस आया हूँ, और जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं लोगों से प्यार करता था और मैं हमेशा चाहता था कि कोई मुझसे प्यार करे और मुझसे बातें करे, लेकिन मेरे खानदान के नाम की वजह से कोई भी ऐसा नहीं करता था, कोई मेरे साथ बात नहीं करता था। लेकिन जब मैंने अपना दिल खुदा को दिया, तब हमारे लोग जिनका पसे मंजर आयरिश था, मेरा ख्याल है कि शायद वो सब कैथलिक थे, और हो सकता है वो सब यही थे। मैं वहाँ गया तो उनका कोई और तरीका था, मैं फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में गया तो उनका कोई और तरीका था। मैंने कहा, खुदावन कोई ऐसा रास्ता भी होगा जो सच्चा है, और किसी चीज ने कहा वो कलाम है, और मैंने उसी कलाम को थाम रखा है। इसलिए हर एक जगह रोया में देखी, जिस रोज मैं इस गिरजे घर के कोने के पत्थर को बिठा रहा था, उस रोज रोया में खुदा ने मुझे कुछ दिखाया, उसे मैंने लिखकर कोने के सिरे के पत्थर के नीचे रख दिया। वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तलीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के माफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। मैंने उन दो दरख्तों को भी देखा जिनके पास मैं खड़ा था, जो बिल्कुल एक ही जैसा काम कर रहे थे। ये सच है, और हम बिल्कुल उसी मकाम पर है, ये सच है। और अब आप नहीं होंगे, याद रखें, मैं आपको एक नेक मशवरा देना चाहता हूँ। किसी शख्स को आपका शुक्रिया ना कहें, किसी भी तरह किसी को ना कहें, किसी को खादम या कोई और समझते हुए ऐसा मत कहें, क्योंकि वो भी एक फानी इंसान है, बल्कि उसके पीछे कोई अच्छी चीज है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कौन है, किसी आदमी में कोई अच्छाई नहीं है, ये सच है। अगर किसी जगह तमाम नरसिंगे जमा हो और उनमें से किसी एक पर कोई खास धुन बजानी हो तो बजाने वाला आदमी होगा, क्योंकि वो नरसिंगे खुद बे आवाज होते हैं। ये वो आदमी है जो नरसिंगे को बजा सकता है। वो नरसिंगा उठाता है और उसे इल्म होता है कि वो क्या करने जा रहा है। नरसिंगे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज उस जेन से आती है जो उसके पीछे काम कर रहा होता है। ये सच है। चुनाचे तमाम नरसिंगे एक जैसे होते हैं, तमाम इंसान एक जैसे हैं, तमाम मसीही एक जैसे हैं। हमारे दरमियान कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम अजीम आदमी या अजीम औरतें नहीं हैं, हम सब बहन भाई हैं और सब एक हल्के में एक जैसे हैं। हम कोई अजीम नहीं है, बस कोई एक दूसरे से ज्यादा अजीम नहीं है। ऐसा करने वाली कोई बात नहीं है, नहीं जनाब, बल्कि हम सब सिर्फ इंसान हैं। किसी बात की तशरी करने की कोशिश मत करें, किसी भी बात में इजाफा करने की कोशिश मत करें, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देते हुए जिंदगी गुजारें। क्या अब सब लोग समझ गए हैं? अपने पूरे दिल से उसे प्यार करें। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं करता रहूँगा। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। और मेरी निजात कलवरी की सूली पर खरीदी। खुदा की तारीफ हो। क्या सब लोग पूरे तौर पर समझ गए? क्या सब लोग ईमान रखते हैं? क्या आपको याद है जब मैंने आगाज करते हुए कहा था हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? क्या खुदा ने आप पर अपना रहम और अपनी भलाई को जाहिर किया है? आमीन। सिर्फ याद रखें, अपने सारे दिल से उसे प्यार करें। मैं अब घर वापस जा रहा हूँ। खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं 1 जून तक फिर दोबारा यहाँ वापस आऊंगा। हो सकता है कि अगर खुदावन ने मेरे दिल में डाला तो मैं मौसम गर्मा के आगाज में यानी जून में शायद शुरू ही में, अगर खुदावन ने आने में देर लगाई तो मैं एक बार फिर यहाँ आकर आखिरी 7 नरसिंगों के पैगाम के लिए 7 रातें मुकरर करूँगा। क्या आप ये पसंद करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे? खुदा मेरी मदद करे। ठीक है, जब तक मैं आपसे दोबारा नहीं मिलता, आए इस अच्छे और पुराने गीत को याद रखें। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। और मेरी निजात कलवरी की सूली पर खरीदी। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। इससे पहले कि पास्टर हमें रुखसत करे, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, बख्श दे के लोग इस बात को समझ जाएं, क्योंकि मुझे यकीन है कोई ऐसी बात है जो ये नहीं समझ सके। लेकिन ऐ बाप, बख्श दे कि ये उस मकसद को जान ले और ये लोग समझ जाएं कि बाप, यही तेरा इनके लिए फजल है कि तूने इनके लिए ये सब बातें जाहिर कर दी हैं। और इन बातों का इल्म हासिल हो जाने पर जिनको तूने हम पर जाहिर किया है, ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स के लिए और उन सब के लिए जो इन इबादत में शरीक होते रहे हैं, दुआ करना चाहता हूँ। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हों जो ईमान ना रखते हों, तो खुदावंद बख्श दे कि वो लोग भी ईमानदार बन जाएं। मैं उन सब लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ जो टेपों के जरिए इस पैगाम को सुनेंगे, और अगर ये बहुत से गैर ईमानदारों के घरों में पहुँचती हैं, और ये बिला शुबा पहुँचेंगी जो इससे इख्तलाफ रखते होंगे। लेकिन ऐ बाप, मैं उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ कि कोई कुफर का कलमा कहने से पहले वो बैठकर कलामे मुकद्दस के इन हवाला जात को देखें जो बयान किए गए हैं, और फिर तुझसे कहें कि हम पूरी तरह मुखलिस हैं और जानना चाहते हैं कि ये सच है या कि नहीं। अहबाब, मेरी उनके लिए यही दुआ है और खुदावन मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो इन दीवारों के साथ खड़े रहे हैं और जो बाहर खड़े रहे हैं और जो कारों में बैठे रहे हैं और छोटे बच्चों के लिए और उन तमाम के लिए जो यहाँ मौजूद हैं। और खुदावन मैं उन बाकी सब के लिए भी दुआगो हूँ। मेरी तुझसे इल्तिजा है कि तू मेरी दुआओं का जवाब दे और इन सबको बरकत दे। खुदावन सबसे पहले इनको हमेशा की जिंदगी दे। मेरी दुआ है इनमें से कोई भी खो ना जाए बल्कि एक भी खोया ना जाए। और अब ए बाप, हम नहीं जानते कि ये अजीम वाक्या कब रूनमा होगा, लेकिन जब हम इन निशानों को और कलाम के वाक्यात को जाहिर होता हुआ देखते हैं तो ये हमारे दिल को खतरे के निशान से भी बढ़कर खबरदार कर देता है। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारी मदद कर। मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारे प्यारे पासवान भाई नेवल की मदद कर। खुदावन इसे फजल और कुदरत और हिकमत से भरपूर कर ताकि ये इस जमा शुदा खुराक से खुदा के बरों की परवरिश कर सके। ऐ खुदावन, मेरी दुआ है कि तू हमें बीमारी से बचाए रख और ये बख्श दे कि जब लोग बीमार हों तो वो याद करें कि खुदावन यीशु का खून मौजूद है और वही काफी है और हमारे कफारे के लिए मज़बे पर रखा हुआ है और मेरी दुआ है तब वो फौरन शिफा पा जाए। मेरी दुआ है कि शैतान की कुदरत से इन्हें दूर रख कि वो इनका हौसला पस्त करके इन्हें रसूमात कायम करने की आजमाइश में ना डाले। और खुदावन दुश्मन की तमाम कुवतों से इनको दूर रख, अपने कलाम से हमें मुकद्दस कर। खुदावन ये बख्श दे। और फिर खुदावन मेरी दुआ है कि तू मेरा मददगार हो क्योंकि खुदावन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अब मेरे दिन बहुत ज्यादा नहीं है और मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरी मदद कर। खुदावन मुझे सच्चा दयानतदार और मुखलिस बना ताकि मैं इस पैगाम को उठाए रखने के काबिल रहूं जब तक इसको उठाना मेरे लिए मुकरर है। और जब वक्त आए और मैं लेट जाऊं और दरिया में उतरूं और लहरें आना शुरू कर दें तो ऐ खुदा उस वक्त मुझे इस काबिल बनाना कि मैं इस कदीम तलवार को किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द कर सकूं जो इसके साथ दयानतदार रहे और खुदावन सच्चाई के साथ कायम रहे। खुदावन ये बख्श दे और उस वक्त तक मुझे मजबूती और सेहत और हिम्मत दे। मेरी कलीसिया की मदद कर। खुदावन हम सबको बरकत दे क्योंकि हम तेरे हैं। हम महसूस करते हैं कि तेरा रूह हमारे दरमियान मौजूद है। हमारा ईमान है कि तू हमारी दुआओं का जवाब देगा इसलिए कि हम खुद को जब तक इस जमीन पर हैं तेरे कलाम के साथ तेरी खिदमत के लिए तेरे सुपुर्द करते हैं। हम सब कुछ अपने प्यारे मुनज्जी खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में उसी के जलाल के लिए मांगते हैं। आमीन। मैं खुदा आपको बरकत दे। मैं उससे प्यार करता हूँ अपने पूरे दिल से। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। भाई नेवल, खुदा आपको बरकत दे। अपनी खिदमत को जारी रखें।
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25th, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape, with the original seventh seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963.
It'll be a good thing that he doesn't know anything about.
ये अच्छी बात होगी कि शैतान इसके बारे में कुछ ना जान सके, क्योंकि अगर वो जान गया तो वो इसकी नकल करेगा, क्योंकि ये उसके काम करने का तरीका है। बस इसलिए खुदा ने इसे तमाम दुनिया से, हत्ता के आसमान से भी पोशीदा रखा है। इसे समझने का कोई तरीका नहीं, इसे सिर्फ खुदा खुद ही जाहिर करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि आज रात आपकी तवज्जो छठी मोहर की तरफ मबजूल करवाऊँ। छठी मोहर के अंदर एक सा प्रति मकसद मौजूद था। घोड़सवारों का भी एक सा प्रति मकसद था। इन सब चीजों में एक सा प्रति मकसद मौजूद था। ये बात हमें वापस तीन की तरफ लाती है और फिर सात की तरफ लाती है। देखें, सात मोहरे, सात प्याले और वगैरह वगैरह। अब देखें, खुदा अपने कलाम को जाहिर करने के लिए इल्मे रियाजी में तीन और सात के नंबर को इस्तेमाल करता है। अब आप गौर करें तो उन घोड़सवारों के साथ देखें, तीन किस्म के घोड़े निकले थे, जिनमें से एक सफेद था, एक सुर्ख था और एक स्याह रंग का था, और फिर चौथे घोड़े में वो सब इकट्ठे मिलकर आए। देखें, ये सब प्रति मकसद था। अब देखें, खुदा ने भी बिल्कुल इसी तरह किया। खुदा ने भी इसी तरह काम किया जब उसने मुखालफ मसीह के मुकाबले में बब्बर शेर यानी अपने कलाम को भेजा। फिर हम देखते हैं, इसके बाद उसने मुसीबत के दौर में कुर्बानी के जानवर बैल को भेजा, और उस मुसीबत के दौर में लोग काम करते और गुलामी में थे और खुद को कुर्बान होने के लिए पेश करते रहे। फिर हम देखते हैं कि अगले दौर में यानी इसलाहकारी के दौर में खुदा ने इंसानी अकल को भेजा। इस हैवान का सर इंसान जैसा था। ये एक कुव्वत थी जो सलाहकारों के अंदर काम करती रही। क्या आपने गौर किया? हर एक, बल्कि इन दिनों भी लोग बिल्कुल उसी तरह लटके हुए हैं जैसे सलाहकारों के जमाने में उनकी हालत थी, क्योंकि वो इस काम को आलमाना नजर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे उस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी सेमिनरियों ने सिखाया है। ये किसी जमाने में खुदा का तरीका था, मगर अब हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम उकाब के जमाने में हैं, जिसमें मुकाशवा और दीगर तमाम चीजें जाहिर की जाएंगी। अब इसका मुवाजना मुकाशवा 10 बाब की 1-7 आयत तक करें। फिर हम देखेंगे कि इस मुकाशवा की किताब में यानी मुकाशवा 10:7 के मुताबिक आखिरी फरिश्ते के पैगाम के तहत खुदा के तमाम वेद खुल जाएंगे। हम छठी मोहर में जो कि अब खुल चुकी है, ये भी देखते हैं कि ये एक सा प्रति मकसद रखती है। अब देखें, वो मकसद यहाँ है। सबसे पहली बात ये कि सोई हुई कुमारियों को खालसपन के अमल के लिए मुसीबत के दौर से गुजारा जाए। उसे ईमान ना लाने और इस पैगाम को रद्द करने के गुनाहों से पाक किया जाए, और ये काम मसाइब के दौर में किया जाएगा। हम इसकी तकमील मुकाशवा 7 में देखते हैं, बल्कि 6वें और 7वें बाब के दरमियान उनकी सफाई का काम हुआ और उन्हें सफेद जामे दिए गए। अब ये दुल्हन नहीं है बल्कि कलीसिया है। ये वो खालिस लोग हैं जिनको शायद इस पैगाम को कबूल करने का मौका ना मिल सका, या उन झूठे नबियों ने किसी न किसी तरह इनकी आंखों को अंधा कर रखा था और इन्हें मौका नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी इनका दिल मुखलिस था और खुदा इनके दिल से वाकिफ था, और यहाँ वो इस अरसे के दौरान पाक किए जाएंगे। क्या आपने गौर किया कि सफाई का एक और भी वक्त है जो कौम बनी इसराइल के लिए है, यानी जब वो जमा किए जाएंगे। ये दूसरी परत है। खुदा मुसीबत के दौर में इसराइल को भी पाक करेगा। लाखों इसराइली जो जमा होंगे और उनमें से 144,000 चुने जाएंगे, और इसी तरह उनको भी पाक किया जाएगा। खुदा इसराइल को भी पाक करता है। गौर करें कि तमाम रूहे जमीन को भी पाक करना जरूरी है। एक ऐसा काम होगा जिससे चांद, सितारों और तमाम फितरत को पाक किया जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ये क्या है? जमीन खुद को नया बना रही है, पाक हो रही है, और हजार साला बादशाहत के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि हजार साला बादशाहत आ रही है। और देखें, हर एक चीज जिसके अंदर कोई गंदगी मौजूद है उसे छठी मोहर के दौरान साफ किया जाएगा। अब देखें, क्या अब आपने गौर किया कि सातवीं मोहर खुलने में भी एक सपर्ती भेद पोशीदा है? ये एक जैसा कि मैं पहले इसको बयान कर चुका हूँ कि ये सात गर्ज की आवाजों का भेद है। आसमान पर गर्ज की सात आवाजें इस भेद को खोलेंगी। ये ऐन मसीह की आमद के वक्त होगा। यीशु ने कहा था, कोई नहीं जानता कि मैं कब वापिस आऊंगा। क्या आपने गौर किया जब यहूदियों ने उससे ये पूछा? जानते हैं, जब हम मत्ती 24 का मुवाजना छठी मोहर के साथ करते हैं तो वहाँ सातवीं मोहर गायब है। आप ध्यान दें, क्योंकि मसीह ने कहा था कि ये फरिश्ते भी नहीं जानते बल्कि सिर्फ खुदा जानता है। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि इसे लिखा नहीं गया। आपने देखा कि हर चीज खामोश हो गई, कुछ वकू में ना आया। फरिश्ते भी इसके मुतालिक कुछ नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता कि वो कब आ रहा है। लेकिन ये सात आवाजें होंगी जो कि गर्ज की सात आवाजें हैं, जो उस वक्त इस अजीम मुकाशवे को जाहिर कर देंगी। इसलिए मेरा ईमान है कि हम इसके मुतालिक नहीं जानते, और अगर हम बल्कि ये उस घड़ी तक जाना भी ना जाएगा, लेकिन ये उस रोज जाहिर कर दिया जाएगा जो घड़ी इसके लिए मुकर्रर है। इसलिए हमारे करने का काम ये है कि हम खुदा की ताजीम और उसकी खिदमत करें और वो सब कुछ करें जो हमें करना चाहिए और अच्छे मसीहों की तरह जिंदगी गुजारें। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि छठी मोहर का भेद हम पर खुल गया है, लेकिन हम जानते हैं कि सातवीं मोहर लोगों पर अफशा नहीं की जा सकती जब तक वो घड़ी ना आ जाए। अब कोई सबब था जिसकी बिना पर खुदा ने सात गर्ज की आवाजों को पैदा होने दिया, क्योंकि इसे आना चाहिए था, समझे? क्योंकि हम इस बात को देखते हैं कि मसीह ने, यानी बरे ने, खुदा के हाथ से उस किताब को ले लिया और उसने सातवीं मोहर को खोला। लेकिन आप गौर करें कि ये एक पोशीदा भेद है, कोई इसे नहीं जानता, लेकिन ये ऐन उसके बयान के मुताबिक है जो उसने कहा था कि कोई उसकी आमद को जान ना पाएगा। इसी तरह लोग इन सात गर्ज की आवाजों को भी समझ ना सकेंगे। यूं आप देखते हैं कि ये बाहम मुंसलिक है। आज हम इसके बारे में इतना जान गए हैं कि बाकी तमाम बातें तो खुल गई हैं, मगर ये बात अभी नहीं खुली है। लेकिन जब मैं कमरे में था और मैंने ये सुना, या बल्कि मैंने कुछ ना सुना बल्कि इसे इन सात गर्जों तक खुलते देखा, और अब हम ठीक इसी मकाम तक आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे भरोसा है कि आप में से हर एक शख्स खुदा की खिदमत करेगा और वही काम करेगा जो दुरुस्त है। अपनी उम्र भर खुदा से प्यार करें और उसकी खिदमत करें, और बाकी सारी फिक्रें खुदा खुद ले लेगा। अब हम यहाँ तकमील तक पहुँच चुके हैं खुदा के फजल से। तमाम भेद जो पहली छह मोहरों में पोशीदा थे, हम उनकी तकमील तक पहुँच चुके हैं। लेकिन हम समझते हैं और जानते हैं कि सातवीं मोहर सब पर जाहिर करने के लिए नहीं है। अब आप जानते हैं कि मसीह की आमद, यानी उसकी आमद की घड़ी में जमीन तबाह हो जाएगी। और मत्ती 24 में जब शागिर्दों ने उससे ये सवाल पूछा कि दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, तो उसने उन्हें इसका जवाब दिया। उसने 31वीं आयत में बताया कि बनी इसराइल एक कौम की मानित जमा हो जाएगी। बल्कि मत्ती 24:31 में अगर गौर करें तो वहाँ उसने एक तमसील बयान करनी शुरू कर दी। आप जरा उस पर गौर करें। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जब तुम उसे कोंपले निकालते देखते हो तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है, और जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वक्त नजदीक है। गौर करें, इसराइली अपने मुल्क में जमा हो रही हैं। लेकिन आप गौर करें कि यहाँ उसने सातवीं मोहर को छोड़ दिया, और फिर जब उसने सातवीं मोहर को खोला तो देखें उसने इसे दोबारा छोड़ दिया। बस हम देखते हैं ये मुकम्मल भेद है। इसलिए अभी इस भेद को जानने की घड़ी नहीं है। इसलिए हम यहाँ तक तो जान गए हैं, लेकिन इसका बाकी मांदा हिस्सा उसी वक्त जाना जाएगा जब यीशु अपनी दुल्हन के लिए दोबारा जमीन पर आएगा, या उस वक्त जो कुछ भी वकूम में आएगा। अब आए उस घड़ी तक दुआ करें और दुरुस्त और ठीक मसीही जिंदगियां गुजारें और मसीह की आमद के मुंतजिर रहें। और अब अगर ये टेप कहीं कुछ लोगों के हाथ लगे तो इससे किसी किस्म का कोई इज्म बनाने की कोशिश ना करें। आपके करने का सिर्फ इतना काम है कि आप खुदा की खिदमत जारी रखें, क्योंकि ये भेद इतना अजीम है कि खुदा ने इसे यूहन्ना को भी लिखने की इजाजत ना दी। गर्जें पैदा हुई, लेकिन वो ही इन्हें जानता था, और उसने वादा किया कि इसे खोला जाएगा, लेकिन इस वक्त इसे खोला नहीं गया। खुदा ने हमें कुछ दिखाया, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। 8 दिन तक मैं हर रोज कमरे में बैठा रहा, और जो पैगाम मैंने आपके सामने वजाहत के साथ पेश किए हैं, आप में से बतेरे इसे समझ जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ कोई खास रूहानी चीज मुसलसल काम करती रही और मुझे यकीन है कि आप उसे महसूस नहीं कर सके और ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर सबूत है कि कलामे मुकद्दस की तशरी खुदा की तरफ से की गई क्योंकि इसको शुरू करने से पहले ही इससे पहले कि मैं मगरिब की तरफ कूच करता एक दिन सुबह 10 बजे खुदावन ने मुझे एक रोया दिखाई और मैंने जो कुछ देखा था यहाँ आकर बयान किया। मैं जानता भी नहीं था कि इसका क्या मतलब है। ये 7 फरिश्तों का एक जुर्मट था। हम सबको ये याद होगा। ये बात आपको इस टेप पर मिल सकती है जिसका उन्वान है जनाब ये कौन सा वक्त है। ठीक है, अब देखें, ये बिल्कुल वही चीज है जो आप देख रहे हैं। मैं मगरिब में था जब 7 फरिश्ते जाहिर हुए। क्या आपको वो नन्हे पैगंबर याद है जो मशरिक की तरफ उड़ गए और फिर उसके बाद दूसरे पैगंबर जो कबूतरों की तरह थे जो कुछ बड़े परिंदे थे वो भी मशरिक की तरफ उड़ गए और फिर मैं देखता रहा और वो हर वक्त मेरे साथ रहे और ये पहला और दूसरा खिंचाव था। अब तीसरे नंबर पर वो 7 फरिश्ते जो मगरिब से तेज और खौफनाक रफ्तार से उड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे ऊपर उठा लिया और वो 7 मोहरों के बेद के साथ मशरिक की तरफ से वापस आ रहे थे बिल्कुल उसी तरह जैसे जूनियर जैक्सन ने ख्वाब में देखा था जिसकी ताबीर खुदावन ने मुझ पर जाहिर की थी और मैंने बयान की थी। उस मखरूत के इंतहाई अंदर एक सफेद पत्थर था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यही सबब है कि उन फरिश्तों से पैगाम हासिल करने के लिए मुझे मगरिब की जानिब जाना पड़ा और वापस यहाँ आकर कलीसिया में बयान किया। आपको याद है कि मैंने कहा था इसके बाद जितनी बातें जाहिर होंगी यहाँ कलीसिया में बयान की जाएंगी और ये ऐन उसी तरह हुआ। एक और बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और अगर आप ये टेप सुने जिसका उनवान है जनाब ये कौन सा वक्त है तो आप मुलाहिजा करेंगे कि एक फरिश्ता मेरे लिए खास काबिले गौर था जबकि बाकी सब एक जैसे दिखाई देते थे लेकिन ये फरिश्ता मेरे लिए खास काबिले गौर था। वो उस मखरूत नुमा जुर्मट में मेरी बाईं तरफ था और आपको याद होगा कि वो अजीब सफेद पत्थर जिस पर कुछ नहीं लिखा था वो मखरूत के अंदर था और फरिश्तों ने मुझे अपने मखरूत नुमा जुर्मट में उठा लिया क्योंकि खुदा के बेद सिर्फ उनको पता थे और अब वो उन पैगंबरों के साथ जो उस मखरूत की ताबीर करने या 7 मोहरों के उस बेद के पैगाम को जो उस मखरूत के अंदर था जाहिर करने आए थे। अब जो फरिश्ता मेरे बाएं हाथ था अगर हम उन्हें बाएं से दाएं गिनना शुरू करें तो उसे आखिरी या 7वां फरिश्ता होना चाहिए। वो मेरी बाईं तरफ था और मैं उसे मगरिब की तरफ से देख रहा था और वो मशरिक की तरफ से आ रहा था इसलिए वो मेरी बाईं तरफ था। बस 7वें फरिश्ते का पैगाम बहुत काबिले गौर था। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि उसका सर पीछे को था उसके बड़े बड़े और तेज दार पर थे और वो सीधा मेरी तरफ आ रहा था। अब यही 7वीं मोहर है। ये अब भी काबिले गौर चीज है और हम तो अभी तक नहीं जानते कि ये क्या चीज है इसलिए इसका खोला जाना ममनू है। लेकिन अब देखें कि आप में से हर एक जो इस इबादत में शरीक हुए हैं इस चीज से वाकिफ है कि ये इबादत कैसी रही है। आखिरी नशिस्त तक हर एक शख्स बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता था। लोग दोपहर को 1 या 2 बजे आकर बाहर खड़े हो जाते थे ताकि जब दरवाजे खुले तो सबसे आगे जाकर जगह हासिल करे और जो दीवारों के साथ खड़े रहते थे वो थक जाते थे। ये सब क्या है? ये रूल कुदुस था जो उन पैगंबरों को भेजता रहा और वो इसे हम पर जाहिर करते रहे। और फिर ये भी गौर करें कि ये किस तरह कलाम के साथ बिल्कुल मुताबकत रखता है। और आपको इल्म होना चाहिए कि ये सच्चाई है क्योंकि इसके वकूम में आने से तकरीबन 2 माह या फिर इससे भी पहले खुदावन ने मुझे बता दिया था क्योंकि मैं इससे ला इल्म मगरिब को गया था और फिर जब वापिस आया तो इसकी ताबीर खुदावन ने अता कर दी। अब याद रखें रोया के अंदर जब उसने रोया में मुझे ऊपर उठा लिया था तो उस वक्त उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं खौफजदा था कि मेरी मौत वाकई हो जाएगी और मैं एक धमाके में मारा जाऊंगा लेकिन आपने देखा कि वो ऐसा ना कर सके। लेकिन कमरे के अंदर इसकी तफसीर उसी तरह जाहिर हुई जैसे होनी चाहिए थी और जैसे खुदावन ने यह मुझे बख्शी उसी तरह मैंने भी बयान कर दी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि रोयाएं कभी नाकाम नहीं होती ये हमेशा कामिल होती हैं। ये ऐन सच साबित हुई है। अब देखें रोया और कलाम और तवारीख और कलीसिया जमाने ये सब आपस में मिले हुए हैं। इसलिए मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बेहतरीन इलम के मुताबिक और खुदा के कलाम और रोया और मुकाशवा के मुताबिक ये तफसीर खुदावंद यूं फरमाता है, अब खुदावंद आप सबको फर्दन फर्दन कसरत से बरकत दे। हाँ, हम खड़े होकर कलीसिया का ये अच्छा और पुराना गीत गाते हैं, खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। मैं खुदा आपको बरकत दे, मैं उससे प्यार करता हूँ अपने पूरे दिल से, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। भाई नेवल, खुदा आपको बरकत दे। अपनी खिदमत को सरंजाम देते रहें।